ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो अकिंचन आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है, आप आत्मतुष्ट हैं। अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तात्पर्य, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। जीव जो कुछ त्याग करता है वह और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छे काम के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इसे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्यतया संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोश हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। उसे एक जरूरतमंद व्यक्ति ने प्राप्त किया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया है। अतः उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त का वास्तविक धन होता है। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा वह ऐसे स्थानों में न पड़ा होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लाभ लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। इसका बहुत लंबा तात्पर्य है, हमने थोड़ा बहुत तात्पर्य पढ़ा पहले। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको ये नोट्स मिला सबके पास है? डोंट हैव सर। हम आप सबको स्वागत करते हैं ये रविवार के कार्यक्रम में। ये दो श्लोक हैं जिसमें ये शब्द अकिंचन शब्द आता है। इसके पहले का श्लोक है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर् येदमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। कुंतीमारिणी बोल रही है भगवान को, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद ये श्लोक बताती है। तो पिछले श्लोक में वो बोलती है कि कौन व्यक्ति है वो भगवान को पा नहीं सकते हैं, और ये श्लोक में बोलती है कौन वो व्यक्ति है वो जो भगवान को पा सकता है। दोनों नैव अर्हति अभिधातुं वै, ये लोग आपको पहुंच नहीं सकते जो जन्म ऐश्वर्य सुत श्री इनमें बड़े चढ़े हैं। और इधर बोलते हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त ये, और आप आपके शुद्ध भक्तों की संपत्ति हो। इसमें ये नोट्स को हम देखने के पहले, उसको समझने के पहले हम एक बैकग्राउंड लीला बताना चाहेंगे। ये शब्द जो है निवृत्त गुणवृत्त ये, इसका मतलब क्या है, जो भगवान और उनके शुद्ध भक्त दोनों हैं जो तीन गुणों से परे हैं, वो तीन गुणों से परे उसको शुद्ध सत्व कहला जाता है। शुद्ध सत्व तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, उससे भी ऊपर शुद्ध सत्वगुण। तो भगवान और भक्त का क्रिया जो होता है हमेशा वो शुद्ध सत्व में होता है, तीन गुणों से परे होता है। इसलिए भगवान को बोलते हैं गुणातीत बोलते हैं। भगवान भी गुणातीत हैं, भक्त भी गुणातीत हैं, और दोनों एक दूसरे से आ सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, और उनकी सब क्रिया तीन गुणों से परे होता है, वो समझना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे एक लीला आता है श्रीमद् भागवत में जो हम पहले स्कंद में ही पढ़ते हैं, पितामह भीष्म जी की। भीष्म पितामह तो उनके पास सारे कुरुओं का राजकरण राजकार्य सब सौंपा दिया गया था उनके पास, वो ही सबसे वरिष्ठ हैं कुरुवंश में, और वो क्षत्रिय भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, और सभा में रहते हैं, और गुरुओं के सभा में सबको सदुपदेश देने वाले, जैसे विदुर जी, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, उनमें भी भीष्म पितामह एक हैं। तो ऐसे भीष्म पितामह जब अपने मृत्यु के पहले जब बाणों के शैया में लेटे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि आप जाओ भीष्म पितामह से, उनको बोलते हैं कि आप इनसे कुछ प्रश्न पूछो धर्म के संबंध में। जब वो धर्म के संबंध में प्रश्न पूछना शुरू होता है, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं उनको कि किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कं अर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। तो ऐसे बहुत दिव्य प्रश्न पूछते हैं विष्णु पितामह को, अब बताइए सब धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म क्या है, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः श्रेष्ठ धर्म क्या है, और सब तरह के जपों में श्रेष्ठ जप किस भगवान का करना चाहिए, और सब देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं उन देवताओं में से कम अर्चनता किसको हम मुझे अर्चना करना चाहिए, स्तवंत कम किसको मुझे स्तुति करना चाहिए, ऐसा पूछते हैं। तो जब ये सब प्रश्न पूछा जाता है भीष्म पितामह को, आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति, उनका हाल कितना बुरा था उस समय। जैसे वो मृत्युशया में लेटे हैं, सब बाण उनके शरीर को छेद रहे हैं और खून भी निकल रहा है, ऐसे दर्दमय अवस्था में इस तरह का प्रश्न उनको पूछा जा रहा है। अगर हमें या हमने एक इंजेक्शन भी लिया है डॉक्टर से और बिस्तर में लेटे हैं, तो अगर कोई आकर आध्यात्मिक प्रश्न पूछेगा तो हम क्रोधित हो जाएंगे उनसे, हम बोलेंगे तुमको पता नहीं कि मैं बुखार हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इधर भीष्म पितामह हम देखते हैं बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ, बहुत अच्छे अच्छे दिव्य वर्णन कर रहे हैं भगवान के बारे में। तो खास करके भगवान कृष्ण इस तरह के परिस्थिति में भीष्म पितामह के पास जाकर प्रश्न पूछने के लिए बताते हैं युधिष्ठिर को, क्योंकि ये समझाना चाहते हैं कि उनके भक्त ऐसे किसी भी अवस्था में वो मूड आउट होते नहीं, कभी कभी वो मेंटल नहीं होते हैं, अलग अलग अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताते नहीं हैं। अगर हमारा तबीयत ठीक नहीं है, कोई आकर हमें भगवान के बारे में प्रश्न पूछे, तो हम उनको एक बहुत बड़ा प्रवचन दे देंगे अपनी तबीयत के बारे में, डॉक्टर के पास हम गए क्या हुआ, है ना। लेकिन इधर वो भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह। इतना ही नहीं, जब ये सब प्रश्न पूछा गया भीष्म पितामह को, उस समय द्रौपदी जी भी थी उधर, तो वो हंस पड़ी। तो भीष्म पितामह ने सुना उनके हंसना सुनकर, उन्होंने पूछा द्रौपदी को, द्रौपदी तुम शायद हंस रही हो, क्योंकि मैं तो सारे जीवन बिताया अधर्म के पक्ष में, कुरुओं के साथ, और इधर मुझे ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है धर्म के संबंध में, इसलिए शायद तुम हंस रही हो, इस तरह बोला उन्होंने। तो उन्होंने कारण बताया कि क्योंकि मैंने अर्जुन का दुर्योधन के सभा में रहा बहुत सालों साल, और उस दुस्संग के कारण और दुर्योधन के नमक खाने के कारण मेरे शरीर में, सारे शरीर में क्या भरा है, ऐसे खून जो भरा है वो सब दुष्ट है, दूषित है वो, इसलिए मेरा चेतना, मानसिक चेतना भी इस तरह दूषित है, इसलिए मैं पापी से पापी हूँ, तो मैं धर्म के बारे में मैं बोलने के लिए लायक नहीं हूँ, फिर भी क्योंकि मुझे पूछा गया मैंने बोला। वाई से बताते हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये कारण नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह जो बता रहे हैं कारण, अनेक दुनियादारी लोग सोचते हैं कि यही कारण है, लेकिन ये कारण नहीं है। अब भागवत में पढ़ेंगे, जो भागवत है इसको अमल पुराण कहा गया है, तो भागवत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हरेक भक्त का अंदर का जीवन है, बाहर का जीवन है। कोई भी भगवान के भक्त होता है उसके अंदर एक जीवन है और बाहर एक जीवन है। जैसे भीष्म पितामह के बाहरी जीवन में उनको कौरवों की सभा में काम करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्रत लिया था कि मैं जो भी कुरु के राजा हो उनको मैं सहायता दूंगा, ऐसे उन्होंने एक वचन लिया था, इसलिए वचनबद्ध थे। और साथ साथ हम देखते हैं कि उनको अनेक चीज़ों को सहन करना पड़ा उनकी सभा में, जैसे द्रौपदी के वस्त्र हरण को देखना पड़ा उनको, इस तरह के पापी कुरुवंशी के राजा लोग जैसे दुर्योधन और दुर्योधन इत्यादि, वो लोगों के कार्यकलापों को देखना पड़ा और सहन करना पड़ा उनको भीष्म पितामह को। तो ये उनका बाहरी जीवन है, और बाहरी जीवन में आप देखेंगे वो कुरुओं के साथ में हैं और युद्ध भी करते हैं गुरुओं के साइड में, लेकिन उनका अंदर के जीवन क्या है वो भागवत में बताया गया है कि वो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। तो वो वीर रस में भगवान कृष्ण के साथ लड़ाई करके भगवान को संतुष्टि देते हैं, जैसे कोई कुश्ती करने वाला राजा को संतुष्टि दे कुश्ती करके राजा के साथ, वो कुश्ती से राजा को कुछ हानि नहीं पहुंचाता है वो, लेकिन राजा को वो संतुष्टि देता है वो कुश्ती के द्वारा। अब उसके लिए राजा भी उसको कुछ पेमेंट देते हैं, उसको कुछ तनख्वाह देते हैं उसको। तो राजा लोग उन दिनों में रखते थे, कभी 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 ऐसे मल्लयुद्ध करते थे, कुश्ती करते थे, तो सब रानियां बैठ कर देखते थे, सब दूसरे मिनिस्टर, सब प्रजा सब बैठ कर देखते थे और राजा कुश्ती करते थे। कभी कभी वो राजा को भी पराजित करते थे, राजा उनको पराजित करते थे, ऐसे वो खेलते थे। उसमें कुछ वैरी भावना नहीं है, दुश्मन की भावना नहीं है उसमें। इस तरह भगवान भी जब लड़ाई करने की आनंद लेते हैं, हम लोग भी आनंद लेते हैं ना, कभी कभी सिनेमा में देखते समय स्टंट सीन जब आता है सब लोग खुश हो जाते हैं, बहुत सीट से खड़े होकर देखते हैं कभी कभी, है ना, क्योंकि ये रुचि क्यों है हमारे अंदर, क्योंकि वो भगवान में है इसलिए हमारे अंदर भी है वो। तो भगवान जब इस तरह की लड़ाई में रुचि लेना चाहते हैं अपने ही भक्तों को लाते हैं, तो उन्होंने लाया था अपने ही भक्त भीष्म पितामह को। तो ये भगवान की इच्छा के अनुसार भीष्म ने कौरवों के पक्ष में लड़ाई किया, भगवान दूसरे पक्ष में लड़ाई किया भगवान ने। अभी देखिए इसके कारण शायद भीष्म पितामह की सोशल स्टेटस नहीं तो प्रेस्टीज वो कम हो सकता है ना, क्योंकि वो ऐसे भगवान के विरुद्ध लड़ाई किया है, इस तरह कुछ लोग बोलेंगे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि उनको मालूम था कि कौरव के सब लोग पापी थे, अधर्मी थे, उनके पक्ष में लड़ाई किया, जैसे द्रौपदी हंस रही है, इस तरह कुछ लोग सोचेंगे, वो भी हो सकता है। और कुछ लोग बोलेंगे कि पांडवों को वो बहुत प्रेम करते थे हृदय में, फिर भी क्या है वो कौरवों के पक्ष में, क्योंकि कौरव के पक्ष में उनको जो आदर सम्मान जो मिलता है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, इसलिए उनके साइड में थे भीष्म पितामह, क्योंकि उनको मान सम्मान की इच्छा था इसलिए उनके पक्ष में थे। इस तरह कुछ लोग उनकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन ये सब निंदाओं को भी परवाह न करते हुए भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में लड़ते हैं। किस लिए? सिर्फ भगवान कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए। तो ऐसे एक दिन युद्ध भूमि में इतने जोरदार वो लड़ाई कर रहे थे भीष्म पितामह, ऐसा लग रहा था मानो उस दिन अर्जुन को खत्म कर देंगे। तो अर्जुन की जो रथ थी उसके घोड़ों को उन्होंने उड़ा दिया और झंडे को भी उड़ा दिया, पूरे रथ को तोड़ दिया उन्होंने। तो भगवान भी नीचे उतर गए, अर्जुन भी उतर गया नीचे, इतना जोरदार वो लड़ाई कर रहे थे भीष्म। ऐसे लगा कि अभी अर्जुन पराजित हो जाएगा और उसको मार डालेंगे, इतना तेजी से वो तीर चला रहे थे। तभी भगवान ने जब देखा उसको, तो भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर ही नहीं लेकिन भगवान के ऊपर भी वो बाण चला रहे थे। तो भगवान ने जब देखा इस घटना को, तुरंत तो अपने हाथ में एक रथ के पहिए को लेकर ऊपर उठाकर तेजी से भागने लगे भीष्म की ओर, जैसे एक सिंह शेर जो है होता है वो एक हाथी के पीछे भागता है उसको प्रहार करने के लिए। तो इस तरह भगवान भागने लगे, तो अर्जुन भगवान के पांव को पकड़ने लगे, उन्होंने याद दिलाया भगवान को, हे भगवान क्या आपने भूल गया, आपने एक व्रत लिया था कि मैं कभी किसी भी तरह का आयुध नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भूमि में किसी का पक्ष नहीं लूंगा मैं, और आप इस तरह जो कर रहे हैं आप अपने ही शपथ को तोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान ने परवाह नहीं किया। तो तभी भीष्म पितामह अपने सब आयुधों को त्याग कर दोनों हाथ से आयुधों को निकालकर खुले हाथ के साथ वो भगवान की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे वो। तो उन्होंने बोला भगवान को, आप अगर मुझे मारना चाहते हो तो आप मारो, अभी मैं तैयार हूँ मारने आपके हाथ से मारने के लिए ऐसे। तो तभी भीष्म पितामह ने ये भगवान के सुंदर चेहरे को देखा, तो भगवान के आंखों में एक तरह का डर था। क्या डर था? कि मेरे भक्त अर्जुन जो है उसको कोई मारना नहीं चाहिए, इस तरह का डर था उनके आंखों में। साक्षात भगवान के जो बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे और उनके अंगवस्त्र जो था वो उनके कंधे से निकाल कर नीचे गिर रहा था, और भगवान के हाथ में जो पहिया था। तो इस तरह भगवान इतने तेजी से सामने भाग रहे थे, तो इस दृष्टि को देखकर भीष्म पितामह बहुत खुश हो गए। इतने में सब सारे लोग शंख बजाने लगे, इसलिए युद्ध अंत हो गया उस दिन। लेकिन इधर भीष्म पितामह लेट हैं अपने मृत्युशैया में, तो उनको तो इच्छा मृत्यु है, शरीर छोड़ने वाले हैं कभी भी। तो उस समय उनके मन में इच्छा आ रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं सब धर्म के बारे में बोलने के बाद अंत में, कि मैं अभी उस दृष्टिकोण में देखना चाहता हूँ जिसमें भगवान इस तरह अपने हाथ में रथांग पाणी होकर रथ के अंग को लेकर वो मेरी ओर भागकर आ रहे हैं, और उनके चेहरे में छोटे छोटे पसीने के बूंद हैं, और उनके शरीर में जो घाव हुआ है मेरे तीरों के द्वारा वो क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रिय का वचन होता है और इसके साथ भगवान के सुंदर चेहरा जो है इसको मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इसको दर्शन करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, इस तरह वो इच्छा प्रकट करते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं उनके सामने। उधर ये वर्णन है भागवत में पहले स्कंद में, सुंदर श्लोक है, सब लोग बोलिए। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवर अंबरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जम् विजय सके रतिर् अस्तु मे न वद्या। इसका मतलब ऐसा है, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, भगवान का रंग जो है तमाल पेड़ के समान है, तो उनके जो पीतांबर हैं वो सूर्य के समान चमक रहा है और उनके शरीर में बहुत सुंदर वैजयंती माला पहने हैं और कस्तूरी तिलक हैं। इस तरह अलग अलग वर्णन देते हैं। श्री कृष्ण इज द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ अर्जुना, ही इज अपियर्ड ऑन दिस अर्थ इन हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी विच रिजेंबल्स द ब्लूइश कलर ऑफ द तमाल ट्री। हिज बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी वन इन थ्री प्लैनेटरी सिस्टम्स, त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में। May his glittering yellow dress and his lotus face covered with paintings of sandalwood pulp be the object of my attraction and may I not desire fruitive results. इस तरह उन्होंने प्रार्थना किया और भगवान ने दर्शन दिया उनको। तो ये असली कारण है भीष्म कौरवों के पक्ष में लड़ने का, ये असली कारण है, ये उनके अंदर का जीवन है। तो भीष्म भी एक महाजन है, द्वादश महाजनों में भीष्म भी एक है। तो वो ये दुनिया को प्रकट कर रहे हैं, अपने ही जीवन के द्वारा वो पांडवों को सिखा रहे हैं कैसे भगवान का भक्त जो होता है उसको गुणातीत होकर ऐसे स्तर पर भगवान के आदान प्रदान, भक्ति के आदान प्रदान करते हुए उसके जीवन जीना चाहिए। तो बाहरी दृष्टि से वो अपने सब कर्तव्यों को निभा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको मालूम था अच्छी तरह, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको अच्छी तरह मालूम था। तो इसलिए इधर बताते हैं कुंती, निवृत्त गुण वृत्त ये। तो भगवान के भक्त और भगवान दोनों तीनों गुणों से परे हैं, परे होते हैं ऐसे। तो ये भीष्म पितामह और कृष्ण उनके बीच में जो चल रहा है वीर रस का आदान प्रदान, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं, सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों को मालूम है उसके बारे में। ज़्यादातर लोग अलग अलग कारण दे सकते हैं, भीष्म पितामह ने क्यों कौरव पक्ष में लड़ाई किया। जो लोग भौतिक कारणों को देखते हैं उनको तीन गुणों के अंदर जो भौतिक कारण है वो ही मिलेगा उनको, और जो लोग तीन गुणों से परे आत्मा को देखते हैं और आत्मा और भगवान के बीच में जो दिव्य संबंध है उसको देखते हैं वो इसको समझ सकते हैं कि निवृत्त गुण वृत्त ये, इसको समझ सकते हैं। जैसे प्रभा जी उदाहरण देते हैं, प्रहलाद महाराज जो हैं वो हार पाना रहे हैं किसको, नरसिंहदेव को, जो उनके पिताजी को खून किया उनको हार पाना रहे हैं। कौन करेगा इस दुनिया में इसे, अगर किसी ने आपके पिताजी को खून किया तुरंत आप भी उसको खून करोगे, है ना, उसको हम शूटिंग करेंगे। इधर हम देखते हैं उनको हार पाना रहे हैं क्योंकि उनको मालूम था अच्छी तरह, बाहरी दृष्टि से मेरे पिताजी को मार रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनको शुद्ध कराकर इनको मोक्ष प्रदान कर रहे हैं भगवान, इस तरह उनको अच्छी तरह मालूम है। जैसे अगर किसी के हाथ में छुरी है तो आप भी हाथ में छुरी लेंगे उसके साथ लड़ाई करेंगे, है ना, नहीं तो उसको मारने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर एक सर्जियन डॉक्टर के हाथ में छुरी है तो आप उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्या आपको मालूम है अच्छी तरह इसके हाथ में जो छुरी है वो भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। इस तरह वो समझ गए अच्छी तरह। तो ये बैकग्राउंड है, अगर इस बैकग्राउंड को अगर हम समझेंगे तो आज का विषय बहुत सरल है समझना। आप अभी नोट्स ले लीजिए। सो व्हाट आई हैव डन, क्या मैंने किया है इधर, ये 3 पेज में प्रभुपाद जी की ये किताब है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, वो किताब से जो खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको उसको लेकर एक हेडिंग दिया है आसानी से याद रखने के लिए और पॉइंट्स भी बनाए हैं। तो इसमें उदाहरण मैंने नहीं दिया है, अभी मैं जो भी उदाहरण दूंगा वो इसमें नहीं है, तो उदाहरणों को आप नोट कर सकते हैं। आप देखेंगे इधर जो पहले 3 पॉइंट जो बताए गए हैं, मेटेरियल एडवांसमेंट, पफ्ड अप, द इल्यूजन, वो 3 पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, वो पहले 3 पॉइंट में कि आत्मा शुद्ध है लेकिन आत्मा के ऊपर 2 आवरण है, सूक्ष्म आवरण और स्थूल आवरण है, पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार इसका। तो भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि ये जो 8 धातु हैं, भूमि रापो अनल वायु कम मन बुद्धि अहंकार, ये सब मेरे बहिरंग शक्ति है, बिन्ना में प्रकृति रश्यता, बिन्ना का मतलब ये अलग भौतिक शक्ति है और इसको भगवान बोलते हैं ये बहिरंग शक्ति है, इट्स इन्फीरियर एनर्जी, इट्स नॉट सुपीरियर एनर्जी, और ये आवरण आ गया है आत्मा के ऊपर। और जो भौतिक आवरण आया है आत्मा के ऊपर उसके बाद आत्मा क्या समझता है, गलत समझ बैठता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये भौतिक शरीर हूँ। तो इसके कारण भौतिक शरीर में जो भी योग्यता प्रदान किया गया है ये दुर्गा देवी के द्वारा जो 3 गुणों से बनाया हुआ, जैसे किसी का शरीर सुंदर बनाया हुआ है, जैसे एक मिट्टी को लेकर कभी कभी हम एक खिलौना बनाते हैं, है ना, तो इस तरह ये पंचमहाभूत की मिट्टी है उसको मिला लेकर दुर्गा और ब्रह्मा जी इन लोगों ने क्या किया है, एक पुतली जैसा हमारे भौतिक शरीर को तैयार किया है, उसमें आत्मा को बिठा दिया है। और इसमें शारीरिक हो नहीं तो मानसिक हो स्तर पर अलग अलग योग्यताएं प्रदान किया है उन्होंने, जैसे किसी को शारीरिक सुंदरता है, किसी को उसके कर्म के अनुसार धनी परिवार में जन्म मिलता है, किसी को ऊंचे कुल में जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया गया है, किसी को किसी का मन और बुद्धि ऐसे प्रदान किया गया है तो उसको बहुत बड़ा पांडित्य प्राप्त होता है। लेकिन ये सब चीज़ सिर्फ आवरण है, ये आत्मा के ऊपर आवरण है, ये स्थूल और सूक्ष्म आवरण है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग इस भौतिक पदार्थ जो है उसको बहुत गंभीरता से लेकर उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसको वर्धन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और उस भौतिक पदार्थ से आनंद लूटने के लिए वो कर रहे हैं। इसको प्रभुपाद बोलते थे बॉडीली प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, बॉडीली प्लेटफॉर्म मतलब है ये शारीरिक चेतना में रहना, और आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, आत्मा के स्तर पर काम करना। जैसे हमने बोला भीष्म पितामह की, उनके बाहरी ये काम था और अंदर भगवान के साथ उनके साथ रिश्ता था। इस तरह हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हमारे बाहरी दृष्टि से अनेक हमारे अंदर योग्यताएं आए हैं बाहरी दृष्टि से, लेकिन अभी आत्मा जो है वो अलग है शरीर से। तो ये याद रखना बहुत आवश्यक है, इसको हम भूल जाते हैं अक्सर। हम कभी कभी कर्मियों के अंदर भी कुछ अच्छे गुणों को देखते हैं, कुछ अगर उनके अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ क्षमताएं हैं तो उनको देखकर हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी भक्त के अंदर कुछ क्षमता कम है, नहीं है, तो हम सोचते हैं कि ये उतना बुद्धिमान नहीं है, इतना इसके पास पैसा नहीं है, इस तरह हम सोचते हैं। अगर कोई भौतिक आदमी है उसके पास पैसा है, उसके पास सुंदरता है, उसके पास पांडित्य है, उसके पास बहुत अकल है पैसा बनाने के लिए है, तो हम सोचते हैं कि ये बड़ा है, बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लोग इस तरह सोचते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोपि सन् मणिना भूषित सर्प किम असौन भयंकर। तो ये भौतिक लोग जो होते हैं उनके अंदर जो भी बड़े बड़े योग्यताएं हों, जैसे जन्म ऐश्वर्य सुतर्ष ये सब हो, ये किसके समान है? ये एक सर्प के सर के ऊपर कभी एक मणि रहता है, मणिनाभ भूषित सर्प किम्मा सौर भयंकर है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? अगर आप मणि को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हो, लेकिन मणि को उठाने के लिए हाथ आगे करो तो डसेगा आपको। इस तरह कभी कभी भौतिक लोगों के कार्यकलाप को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, और उनके साथ जब संग करते हैं तभी उनके दुस्संग से, कुसंग से हम भी प्रभावित हो जाते हैं। तो कभी भी ये भौतिक व्यक्ति जो हैं उनके अंदर जितना भी क्षमताएं हों वो कभी भी वो शुद्ध नहीं हो सकते। एक उदाहरण बताते हैं, प्रभुपाद जी के टाइम एक मिस्टर पेने नाम का एक आदमी था, तो उसने हमारे इस्कॉन के भक्तों को बोला था कि मैं एक बहुत बड़ा बंगला है और बहुत बहुत लाखों लाख डॉलर है वो, तो उसको मैं आपको फ्री में आपके इस्कॉन संस्था को दिला दूंगा। तो भक्त लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, कैसे इतना बड़ा सुंदर बंगला को हम फ्री में देने वाले हैं, तो उसके पीछे पड़े थे। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को चेतावनी दी थी, आप सावधान रहो, को ये आदमी अगर आपको देने के लिए इच्छा करता है तो इसका मतलब है इसके पीछे कुछ कारण है, आपको धोखा दे देगा, सावधान, ऐसे वार्निंग दिया था प्रभुपाद जी ने। तो ये आदमी एक बार भक्तों को बोला कि मुझे कुछ लायर लोगों के लिए कुछ खर्चा के लिए पैसा कुछ चाहिए, तो $5,000 चाहिए आप दे दो, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। वो तो सिर्फ एक महीने की बात है, उसके बाद पूरा बंगला आपको मिल जाएगा। तो भक्तों ने सोचा कि ये $5,000 क्या बड़ी बात है, ये तो करोड़ों करोड़ों डॉलर का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है हमको मिलने वाला है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा था क्या हम दे सकते हैं, और प्रभुपाद जी ने मना किया था मत देना, ये ऐसे पैसा ले लेगा और कुछ नहीं देगा। लेकिन भक्तों लोगों ने प्रभुपाद जी की चेतावनी को परवाह ना करते हुए उसको पैसा दे दिया। अब भक्तों ने सोचा कि हम प्रभुपाद जी को एक प्लेजेंट शॉक देंगे, हम कि अभी बिल्डिंग मिल गया, उसके बाद प्रभुपाद जी को बोलेंगे कि हमने पैसा दिया उसको। लेकिन वो आदमी पैसा देकर धोखा दे दिया उसने। तो पैसा मिलने के बाद पेने और उनके लायर लोग बोल दिया कि अभी आपको नहीं मिलेगा बंगला, चले जाओ आप लोग, तो भक्तों को भगा दिया उन्होंने। तो बाद में जब प्रभुपाद जी को लेटर लिखा भक्तों ने, प्रभुपाद जी ने वापस लेटर लिखा, बोला भक्तों को देखो ये कृष्ण के पैसा जो बहुत कठिनता से हमने इकट्ठा किया है उसको संभालना भक्तों का कर्तव्य है, और आप लोग समझो कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी मूर्खता के कारण इस तरह भगवान के पैसा को तुमने खो बैठा है। कभी भी कर्मी लोगों के ऊपर विश्वास मत रखो, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला, क्योंकि उनके अंदर कभी भी सद्गुण नहीं हो सकते। कर्मी लोग जो होते हैं वो पूरे शारीरिक चेतना में जीते हैं, इसलिए इंद्रिय और इंद्रिय भोग के पीछे वो बहुत, दे हैव अग्रेसिव रेस आफ्टर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, तो वो इंद्रियों के तर्पण के पीछे बहुत तेजी से वो बढ़ रहे हैं कर्मी लोग, क्योंकि वो इंद्रिय निग्रह नहीं है उनके अंदर, वो हमेशा दूसरों को धोखा देने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कोट किया था, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, जो भगवान के भक्त नहीं उसके अंदर क्या अच्छा गुण हो सकता है, विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम आकर्षित मत हो जाओ, इम्प्रेस मत हो जाओ बाहर के लोगों के जीवन को देखकर, क्योंकि हम भक्त लोग हम देखते हैं, हम अगर कोई बोलता है कि मेरा बेटी है वो अमेरिका में काम करती है, हम बोलते हैं अमेरिका में काम करती है, बड़े लोग हैं ये लोग, लोग तुरंत ये करते हैं क्या, आकर्षित हो जाते हैं। अगर कोई बोलता है मेरा कांटेक्ट है वो पॉलिटिशियन के साथ, वो जो एमपी है वो हमारे मामा है, अरे तुम्हारे मामा एमपी है, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। इम्प्रेस मत हो जाओ भौतिक लोगों के कुछ इस तरह के योग्यताओं को देखकर, शारीरिक सुंदरता ऐश्वर्य इन चीज़ों को देखकर। तो ये कर्मी लोगों के अंदर हमने बोला कि उनको सर्प के समान, लेकिन हमारे अंदर भी एक सर्प है। क्या है वो सर्प? जिस तरह हम कर्मियों के बारे में बोल रहे हैं इस तरह हमारे मन को भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी षड रिपु हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य, वो भी सर्प के समान है, क्योंकि सर्प ऐसा प्राणी है जो कुछ किए बिना भी वो डसता है। किसी भी, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या भावना है। इस तरह हमारे अंदर जो षड रिपु हैं उसके कारण कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सज्जन हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ, अच्छी तरह हम भक्ति करते हैं, लेकिन अचानक कभी हमारे अंदर अहंकार आ सकता है। और वो अहंकार के, जिस तरह इधर बताती है कुंती महारानी, येदमान मदह पुमान, भौतिक लोगों के अंदर जब ये सब क्षमताएं होता है वो गर्वित हो जाते हैं। भक्त के संबंध में जब हम बोलते हैं भक्त को क्या होता है, भक्त के अंदर भी अहंकार आ सकता है। हम अगर सतर्क नहीं हैं तो हमारे अंदर भी वो अहंकार आ सकता है, और हम अहंकार के वश में आकर हम हमारा पतन भी हो सकता है भक्त में, जीवन में। तो कभी कभी भक्त लोग किसी तरह के क्षमता के साथ आते हैं, तो हम तुरंत उस क्षमता को, हम भक्ति हमारे भक्त हमारे संस्था को बढ़ाने के लिए हम उस क्षमता को लगाते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह का क्षमता हो, टैलेंट बोलते हैं ना, टैलेंट, तो हमें समझना चाहिए कि अगर कोई भक्ति में आ गए, प्रभुपाद जी ने अपने धनी शिष्य और गरीब शिष्य इनको समानता से ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने, प्रभुपाद ने फर्क नहीं देखा। ऐसा नहीं कि धनी शिष्यों को जिनको दीक्षा दिया उन्होंने उनको अलग ही ट्रीटमेंट दिया। आप देखेंगे फोर्ड के साथ प्रभुपाद जी कैसे बर्ताव करते थे। वंस अ पर्सन बिकम्स इनिशिएटेड डिवोटी, प्रभुपाद ट्रीटेड देम जस्ट लाइक एनीबडी एल्स ओनली, नॉट दैट ही ट्रीटेड देम इन अ डिफरेंट वे। द रीजन इज one should be very cautious that even in the field of devotional service, if one is not careful, these things can lead to false pride, ahankar. तो ये अहंकार के कारण क्या होगा, हम दूसरों के अंदर दुर्गुणों को देखेंगे, हम सोचेंगे कि सब लोग मेरे साथ स्पर्धा कर रहे हैं और स्पर्धा में मैं जीतना चाहता हूँ, इस तरह हम सोचेंगे, और दूसरों में दुर्गुण देखने के कारण हम अपराध वगैरह करेंगे हम। तो इसको प्रभा जी बोलते हैं आगे के पॉइंट देखे, तो ये तीसरा पॉइंट में इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन का मतलब है बॉडीली प्लेटफॉर्म, ये शारीरिक चेतना है। अगर हम शारीरिक चेतना में रहते हैं इस हमारा, हम क्या करेंगे, हमारा आसक्ति भगवान के ऊपर नहीं रहेगा, इस संस्था के सब सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर रहेगा। अलग अलग लोग इस संस्था में अलग अलग कारण से आते हैं, अलग अलग कारण क्यों इस संस्था से हम जुड़े हुए हैं। कुछ लोग शांति के लिए आते हैं, कुछ लोग मैत्री के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रेम के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रसाद के लिए आते हैं, कुछ लोग अमेरिका फॉरेन चांस मिलेगा सोचकर आते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग कारणवश आते हैं संस्था में। तो ये शारीरिक चेतना है इल्यूजन, इसलिए प्रभा जी लिखते हैं इसके बारे में इल्यूजन लिखते हैं। तो हम भक्ति में जीवन में आने के बाद भी हमारे आसक्तियों को हम देख सकते हैं, क्या हम हमारे भौतिक जीवन को हम बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं तो हम आध्यात्मिक जीवन को हम वर्धन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इज माई अटैचमेंट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग माई मटीरियल असेट्स एंड मटीरियल वेल बींग, आर एम आई एंडेवरिंग टू इंक्रीज माई रिनंसिएशन एंड अप्रोच कृष्णा मोर एंड मोर क्लोजली। सो वी ऑल कैन आस्क दिस क्वेश्चन, इज माई अटैचमेंट टू होम कीर्तन गेन इंक्रीजिंग, और इज माई अटैचमेंट टू कृष्णा एंड कृष्णा सर्विस इंक्रीजिंग। वी कैन मेक वन टू वन कंपेरिजन, एम आई एक्टिंग ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, एम आई एक्टिंग ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, एम आई इंक्रीजिंग माई मटीरियल लाइफ और एम आई इंक्रीजिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ, किसको मैं बढ़ा रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा रहा हूँ, भौतिक जीवन को बढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारे इसके अनुसार है, इट डिपेंड्स ऑन टू व्हाट डिग्री ऑफ इल्यूजन। तो ये एक पॉइंट आता है, आप आगे के पेज में देखें, देयर इज वन नीचे से चौथा पॉइंट, 1, 2, 3, 4 फोर्थ पॉइंट फ्रॉम द बॉटम इन द सेकेंड पेज, से लॉर्ड नेवर अट्रैक्टेड बाय मोड्स, लिविंग एंटिटी हैज द टेंडेंसी टू बी अट्रैक्टेड बाय मोड्स। तो ऐसे बताया गया कि भगवान जो है हमेशा तीन गुणों से परे रहते हैं। जब भगवान आनंद लूटना चाहते हैं, वो ख्लादिनी शक्ति जो है जो भक्ति का स्वरूप श्रीमती राधा रानी है, उनके साथ भगवान लीला करते हैं, उनके साथ गोपियों के साथ और अपने भक्तों के साथ। ह्लादिनी का मतलब है प्रह्लाद हलाद दायिने हम बोलते हैं, तो प्रह्लाद के हृदय में जो ह्लादिनी शक्ति है वो भक्ति का शक्ति है। तो भक्ति की शक्ति से ही भगवान आनंद लूटते हैं। जब हम आनंद लूटना चाहते हैं हम क्या करते हैं, ये भौतिक दुनिया में जीव जब आता है तो आनंद लूटना चाहता है, वो कैसे आनंद लूटता है, हाँ इंद्रिय तर्पण के द्वारा। ये बड़ा गलत है, वो इंद्रिय तर्पण में क्यों लगता है, क्योंकि वो इल्यूजन में है, इल्यूजन का मतलब है मोह में है अभी। तो अगर कोई बोलेगा कि ये सब ऐश्वर्य जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री ये सब होने से और इंद्रिय तर्पण में लगने से क्या होने वाला है, वो बताते हैं प्रभुपाद जी आगे। यू कैन सी द पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ, मेटीरियल इंटॉक्सिकेशन। मेटीरियल इंटॉक्सिकेटेड पर्सन थिंक्स गॉड इज फॉर द पुअर पीपल। मॉडर्न सिविलाइजेशन इंक्रीजेस इंटॉक्सिकेशन। इन द इंटॉक्सिकेटेड स्टेट वन टॉक्स नॉनसेंस एंड कैनॉट अंडरस्टैंड द सिंपल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। ऑल दिस फोर पॉइंट्स ये बताते हैं कि ये अहंकार आता है हम शारीरिक चेतना में जब रहते हैं। अगर हमें कोई निंदा करते हैं तो तुरंत हमें क्रोध आता है ना। क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, है ना, इसके कारण हमें क्रोध आता है। अगर हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो इतना छोटा है, वो तो बालाग्र शतभागस्य शतता कल्पितस्य च, इतना छोटा है आत्मा। तो अगर कोई बोलता है कि तुम छोटा हो, बोलने से भी गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं वो, है ना, आत्मा छोटा ही छोटा है। अगर आप शरीर के बारे में सोचते हो तो शरीर तो मृत है, शरीर में तो जीवन नहीं है, शरीर तो मृत शरीर है, अभी भी शरीर मृत है, आत्मा के कारण दिखता है कि इसमें जीवन है। अगर वो शरीर को बोलते हैं तो ये मृत जिसको बोल रहे हैं, मृत जिसको क्रोध नहीं आना चाहिए, है ना। अगर मृत जिसको हम कोसते हैं तो क्रोध नहीं करेगा वो। इस तरह हमारे शरीर को कोई बोल रहे हैं तो हमें क्रोध के कारण नहीं है, आत्मा को बोल रहे हैं तो आत्मा तो छोटा है, फिर भी हम क्यों हम क्रोधित होते हैं, इसका कारण है हम बॉडीली प्लेटफॉर्म में हैं, शारीरिक चेतना में हैं, इसके कारण। तो इसको बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति शराब पीने से वो होश में नहीं रहता है ठीक तरह से, वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में चला जाता हो, कभी कभी शराब पिया हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, कोई व्यक्ति उसको एक लाफा मारेगा नीचे गिर जाएगा वो, तुरंत वो गिर जाएगा, उसके अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है, लेकिन वो इमेजिन करता है, वो स्वप्न करता है कि मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, नहीं तो बोलता है कि मैं मोहम्मद अली आया हूँ, मैं बहुत बड़ा पहलवान आया हूँ बोलता है वो। इस तरह शारीरिक चेतना में एक तरह का नशा आता है। हाँ हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी, आप किसी को भी पुरुष को पूछिए स्त्री को पूछिए, जब आप सरल कपड़े पहनते हो, अभी मंदिर में आते हैं आप साड़ी पहनते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, आपका चेतना एक तरह का चेतना रहता है। जब आप पहनते हो एकदम टिप टॉप पैंट शर्ट पहनते हो, शू पहनते हो, कूलिंग ग्लास पहनते हो, एक बड़े बड़े गाड़ी में बैठकर आप सवार होकर जा रहे हो, तो एक तरह का क्या आता है, अहंकार आता है ना। अगर आप मर्सिडीज बेंज कंपनी की गाड़ी हो, मर्सिडीज बेंज में बैठकर जा रहे हो, तो आप सोचते हैं कि मैं ये कार हूँ, मर्सिडीज बेंज में जा रहा हूँ, अहंकार, इस तरह हम सोचते हैं, एक तरह का अहंकार आता है। हालांकि वो खुद का कार नहीं है, वो कंपनी का कार है, फिर भी हम सोचते हैं कि कौन कौन मुझे देख रहे हैं बाहर से, इतना बड़ा गाड़ी में बैठा हूँ। इस तरह कोई भी देख सकते हैं कि अगर आप सरल कपड़े पहनो तो आपका दिमाग भी ठंडा रहता है, लेकिन अगर हम टिप टॉप कपड़े पहनते हैं, आधुनिक तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो हम सोचते हैं कि सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं सब लोग। तो ये अहंकार आता है, ये एक तरह का नशा चढ़ जाता है सर के ऊपर, इस तरह के। तो ये सिंप्लिसिटी जो इसके ऊपर जोर दिया गया है हमारे शास्त्र में, यही कारण है, क्योंकि अगर सिंपल नहीं है हम कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं तो नशा चढ़ जाता है। ये सब जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री इन चीज़ों से नशा हो सकता है, और उस नशे के कारण कोई व्यक्ति भगवान को बहुत आसानी से भूल सकते हैं। इतना तक कि जो यज्ञ दान तप भक्ति ये सब करने वाले भी भगवान को बोल सकते हैं। एक ऐसे एक राजा था नहुषा नाम का, वो बहुत बड़े राजा था और यज्ञ वगैरह करता था। तो एक बार दो देवता वरुण और वायु, वो देवता आकर उन्होंने बोला कि अभी इंद्र, उस समय इंद्र को पदवी से निकाला गया था कुछ समय के लिए, अभी कोई नहीं था इंद्र पदवी में। तो उन्होंने नहुषा को सोचा कि इसको हम इंद्र बना देंगे, लेकिन नहुष के अकाउंट में सिर्फ 98 यज्ञ किया था उसने, दो यज्ञ की अभाव थी। तो वायु और वरुण ने बोला कि हम दोनों एक एक यज्ञ का फल डालेंगे आपको, तो कुल मिलाकर 100 हो जाएगा और आपको हम इंद्र पदवी दे देंगे। तो नहुष ने मना किया, बोला कि नहीं नहीं, ये सब इंद्र बनने के लिए मैंने नहीं किया यज्ञ, मैं तो साधारण तुच्छ राजा हूँ, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन उन्होंने उसको फोर्स किया, फोर्स करके उसको इंद्र बना दिया, तो मान लिया इसने। तो ऊपर जब इंद्रलोक में गया, ऐसा बताया गया कि वो नमस्कार करते हुए सब चीज़ों को छूकर वो प्रार्थना करने लगा सब चीज़ों को। तो इंद्र के दरबार में जाकर जब बैठा उसने सिंहासन में, उसके सर के ऊपर नशा चढ़ गया राजा का। तो वो क्या करने लगा, सब लोगों को सताने लगा, सबको कष्ट देने लगा और सबके ऊपर अपने स्वामित्व को जमा रहा था धीरे धीरे। और सब लोग बोल रहे थे कि देखो ये बड़ा राजा बन गया अभी, सबको कंट्रोल कर रहा है अच्छी तरह, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं है ब्राह्मणों के ऊपर। तो जब इसको कान में सुनाई दिया, ऐसे बोल रहे हैं लोग मुझे, काल बुलाओ ब्राह्मणों को, बुलाओ, कॉल द ब्राह्मण्स, बुलाया और ब्राह्मणों को बोला कि मुझे पालकी में लेके जाओ। ब्राह्मण पालकी में लेके जाने लगे उसको। तो कुछ लोग बोलने लगे इंद्रलोक में, ठीक है ये तो ब्राह्मणों को भी अपने काबू में कर लिया अभी इसने, फिर भी ये सच्ची जो है इंद्र की पत्नी, अभी तक उसके साथ इसने कभी जिया नहीं है, वो तो अपने ही अंतपुर में रहती है वो, और ये तो इंद्र पदवी मिला है, इंद्र पदवी मिलने के बाद इसके साथ बैठने के लिए रानी नहीं है कोई इसके पास। तो उसने बोला, तुरंत उसने संदेश भेजा उस सची इंद्र के इंद्राणी को, तुरंत आ जाओ, ये पालकी भेजा था उसको लाने के लिए। तो सची ने बोला कि मैं तो पिछले इंद्र की रानी हूँ, तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ। तो उसने प्रार्थना किया सप्तऋषियों को, सप्तऋषियों को बोला उन्होंने कि इस तरह वो बुला रहा है मुझे, अब मैं तकलीफ में, क्या करना चाहिए मुझे। सप्तऋषि ने बोला कि तुम ऐसे संदेश भेजो उसको कि जब सप्तऋषि ये नहुष को लेके जाएंगे एक पालकी में, तभी मैं आपसे मिलूंगी, ऐसे तुम उनको एक संदेश भेजो। और उसने संदेश भेजा था। तो सप्तऋषियों को बुलाया उसने, सप्तऋषि तो पहले पहले के ऋषि हैं, उनको बुलाया, बोला कि मुझे एक पालकी में लेके जाओ आप लोग। तो एक एक साइड में चार ऋषि थे और दूसरे साइड में तीन ऋषि थे, वो आठ ऋषि नहीं थे, सप्तऋषि थे वो। तो पालकी में ले लिया। तो एक ऋषि थे, बहुत छोटे थे मेरे जैसे, अगस्त्य, वो अगस्त्य थे। तो दूसरे लोग थोड़े लंबे थे और ये बहुत छोटे थे। तो पालकी उठाते समय थोड़ा पालकी ऐसे उसे हिल रहा था, तो ये बहुत क्रोधित हो गया नहुषा, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति था, और बोला उनको, क्यों इस तरह पालकी धीरे से चल रहा है, जल्दी चलो, सर्प सर्प सर्प, ऐसे बोला उसने, सर को मतलब जल्दी चलो। तो देखा कि अगस्त्य धीमी से चल रहे हैं। तो ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि कुछ शास्त्र में बोला गया है कि उसने थूका बाहर, कुछ जगह में बताया गया है कि उसने अपने पांव पैर को लेकर उस ऋषि के सर के ऊपर ऐसे किया है। तो अलग अलग जगह हम अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं। जो भी उसने किया हो, तुरंत उसको ब्रह्मशाप आ गया उसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि सर्प सर्प बोलकर हमको भगा रहे हो, तुम सर्प बन जाओ, इस तरह उनको शपथ, उनको शाप मिला। तो ऊपर से इंद्रलोक से जो नहुष इंद्र बन गया था, वो क्या हुआ, वो सर्प होकर ऐसे नीचे 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 अंतरिक्ष के द्वारा आकर हिमालय पर्वतों के बीच में कहीं ना कहीं तो वो गिर गया वो। तो वो अज्ञानी सर्प था, वो पूरा भूल चुका था अपने आत्मा परमात्मा के रिश्ते को। तो उसको अगस्त्य मुनि ने बोला था, देखो तुमको जब आत्मा और परमात्मा इन दोनों के बीच में जो दिव्य संबंध है इसके बारे में ज्ञान तुमको प्राप्त होना चाहिए, वो एक चीज़। दूसरा है ब्राह्मणों की महिमा और ब्राह्मण के गुणों की महिमा, इसके बारे में तुमको जानना चाहिए। ये दो चीज़ को जब तुम समझोगे तभी तुमको ये सर्प के शरीर से मोक्ष प्राप्त होगा। तब तक तुमको सर्प ही रहना पड़ेगा उधर जंगल में। तो सर्प रहा, ये तो बहुत लंबी कथा है। बाद में ऐसा आता है कि भीम जो है वो जंगल में चल रहा था, तभी देखा उसने तरह तरह के लोमड़ी, कभी कभी तो कुछ बालू, ऐसे तरह तरह के प्राणी आते थे बीच में, सबको थप्पड़ मारकर वो फेंक रहा था साइड में, और जो भी पेड़ पौधे थे बीच में उनको उखाड़ कर वो फेंक रहा था भीम चलते चलते जंगल में। क्योंकि वृषकाय पवन में जब आए थे तभी देखने के लिए जंगल में जा रहा था कैसा है जगह। उस समय ये सर्प पड़ा था उधर, तो सर्प तुरंत उसको पकड़ लिया, इतना जोर से पकड़ा वो हिल भी नहीं पाया अपने शरीर को। तभी उसको पता चलता है कौन है ये नहुष राजा, उनके ही वंश में आने वाला है। तो बोला उसने, देखो आज तुम मेरे दैव ने तुमको भेजा है मेरे खाने के रूप में, तुमको मैं खाने वाला हूँ आज, ऐसे बोला उसने। तो तभी भीम जवाब नहीं दे पाए उसके प्रश्नों को, बाद में युधिष्ठिर आकर जवाब देते हैं उसके प्रश्नों को, जो भी प्रश्न उसने पूछा। तो हम सब सोच सकते हैं हमको भी जिस तरह नहुष को सर्प का शरीर मिला है, लेकिन हमको मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन अज्ञानता जो हमारे में है वो उसके समान ही है। उसको जो अज्ञानता प्राप्त हुई ऐसे ही हमारे अंदर भी अज्ञानता है, और हम धीरे धीरे अभी समझ रहे हैं। जिस तरह नहुष को भी जानकारी दिया गया आत्मा क्या चीज़ है, भगवान कौन है, और बीच में कैसे एक दिव्य रिश्ता है ये सब, तो गर्व के कारण वो उसको सर्प का शरीर प्राप्त हुआ। इस तरह हमारे अंदर भी भक्तिमय जीवन में जब हम गर्व आ जाता है, नशा चढ़ जाता है हमारे सर में, तो हम सही ढंग से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। वही पॉइंट आगे बताया गया है, वन कैनॉट कॉल द होली नेम्स फीलिंगली, हे कृष्णा हे गोविंदा, इस तरह दे हैव लॉस्ट दर स्पिरिचुअल फीलिंग। तो ये फीलिंग जो बोलते हैं, भावना जो है वो भावना नहीं रहता है हृदय में। इस तरह जब गर्व आता है, इस तरह कुंती मानिनी बताती है, जो व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं है, जैसे जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, उसको गर्व करने का कारण ही नहीं है उसको, कुछ नहीं है, तो वो उसका ठंडा दिमाग रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये सब गुण हैं वो गर्वित होने की संभावना है, और जो गर्वित होते हैं उस गर्व के कारण वो भक्ति में एक बहुत बड़ा बाधा के रूप में कड़ा हो जाता है इस तरह। तो अगर ये सब हम जानते हैं तो हम क्यों भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं, उसकी क्यों हम लालसा करते हैं, ये पूछने की बात है ना। तो इधर वो बोलती है कुंती महारानी कि ये भौतिक पदार्थ जो है और भौतिक क्षमताएं, ये सब चीज़ बहुत बड़ा बड़ा बाधा के रूप में खड़े हो जाते हैं हमारे भक्ति में जीवन में, और हम भगवान के नाम पुकार नहीं सकते हैं ये सही भावना के साथ। क्योंकि कारण क्या है, अगर हमारे पास बहुत पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि हम पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की क्या ज़रूरत है, भगवान गरीब लोगों के लिए है, इस तरह लोग सोचते हैं। नहीं तो हमने आंखों से देख लिया है कि पैसे के द्वारा हम कुछ भी करवा ले सकते हैं लोगों के द्वारा। अगर हमारे अंदर कुछ खास गुण है, जैसे बुद्धिमत्ता है, सुंदरता है, पैसा है, ऊंचा कुल है, तो हम उनके द्वारा हमने उस क्षमता को प्रकट करके दूसरों को आकर्षित किया है हमारी ओर, इसके कारण हम सोचते हैं कि ये क्षमता मेरे पास है दूसरों के पास नहीं है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, इस तरह का नशा चढ़ जाता है। और उस नशे के कारण जब गर्व आता है तभी हम भगवान को पुकार नहीं सकते हैं, तुरंत वो हमारे हृदय एक पत्थर जैसे बन जाता है, हम पुकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि पहले कि इस नशे को कैसे हम उतार सकते हैं, इसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि स्मरण नित्यम अनित्यता, ये जो भी भौतिक क्षमता हमारे अंदर वो सब क्षणभंगुर है, वो चले जाने वाला चीज़ है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कथा इनका लोमस ऋषि का, लोमस ऋषि नाम का एक ऋषि थे, उन वो बताया जाता है कि वो ब्रह्मा जो होते हैं एक एक ब्रह्मा जी आकर जब मरते हैं तभी उनके शरीर से एक रोम गिरता था नीचे, इतना लंबा साल हो रहते थे लोमस ऋषि, एक अनेक ब्रह्मा आकर चले गए, इतने लंबा जीवन वो बिताने लगे। और ऐसा बताया जाता है कि ही हैड अ वेरी हैरी बॉडी, उनका शरीर में बहुत से बाल थे, सारे शरीर में बाल थे उनके, इसका मतलब वो जल्दी मरने वाला आदमी नहीं है, वो तो करोड़ों करोड़ों साल जीने वाला आदमी है। तो एक दिन वो नदी के तट में बैठ कर वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके कुछ शिष्यों ने उनके पास आया और दंडवत प्रणाम किया, बोला कि महाराज आप ठंडी में सर्दी में और कभी कभी गर्मी में भी आप ऐसे तपस्या करते हैं हमेशा बाहर ही बाहर बैठ कर, आपकी भलाई के लिए हम एक कुटीर बनाना चाहते हैं आपके लिए। वो शिष्यों को बोला उन्होंने समय की बर्बादी मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, समय तो बहुत कम है, अच्छा कि तुम तपस्या करके भगवत नाम निकट चलो, बस निकल चलो, इधर समय वेस्ट मत करो उसमें, ऐसे बोला उन्होंने। तो प्रभु जी बोलते हैं ऐसे लोमस ऋषि जो ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा जीने वाले हैं, हजारों ब्रह्मा जीओं के समय तक जीने वाले आदमी हैं, अगर वो बोलते हैं कि तुम भौतिक कार्यों में मत लगो, ये कुटीर बनाना कितना समय लगने वाला चीज़ है वो है। तो हमें इस कथा से हम क्या सीखना चाहिए, ये दुनिया के टेम्पररी क्या बोलते हैं उसको, अस्थाई अस्थाई क्षणिक, ये दुनिया के क्षणिक, ये दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्षणिक या क्षणभंगुर है, इसको हमें याद रखना चाहिए ऐसे बताते हैं। तो ये याद रखने से हम समझ सकते हैं, जैसे अर्जुन के पास शक्ति था पहले, वो युद्ध किया उसने है ना कुरुक्षेत्र भूमि में, लेकिन बाद में जब भगवान चले गए उन्होंने शक्ति को भी लेकर चले गए भगवान, हाँ उसके अंदर कुछ शक्ति नहीं था उसके बाद चला गया उसके बाद। इस तरह हमारे अंदर भी जो क्षमताएं हैं वो भगवान देते हैं, जब लेना चाहते हैं वो तभी ले लेंगे, वो पैसा हो तो सुंदरता हो, बुद्धिमता हो, जो भी हो, अगर हम इसको याद रखते हैं तो हम क्या समझेंगे, ये सब भगवान के हैं और मेरे नहीं हैं, और कभी भी इसको भगवान ले सकते हैं, और इसको लेकर गर्व करने की कुछ मतलब ही नहीं है, इस तरह हम समझेंगे। तो प्रभा जी आगे बताते हैं, सी डिक्रीज द मटेरियल इंटॉक्सिकेशन, डिक्रीज द फीवर ऑफ इल्यूजन। तो बोलते हैं कि इस नशा जो चढ़ जाता है हमारे सर के ऊपर, इसको निकालना ही असली आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। तो खुद के ऊपर निर्भर रहना और सोचना कि सब कुछ मेरे हाथ में है और कुछ करके दिखाऊंगा मैं इस दुनिया को, मैं कौन व्यक्ति हूँ, इस तरह सोचना, मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं हीरोइन हूँ, इस तरह सोचना, इस भावना को त्याग कर हमें समझना चाहिए कि मेरे पास जितना भी क्षमता हो, जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, तब तक होगा नहीं कुछ भी। आप में से आप सोचिए, बहुत लोगों का अनुभव होगा, कभी कभी हम इतना भाग दौड़ करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो करने के बाद भी जो हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है, और कभी कभी बहुत परिश्रम के बिना भी आसानी से कुछ कठिन से कठिन चीज़ भी हो जाता है, आपको अनुभव होगा अपने जीवन में। इसका कारण क्या है, जब भगवान का सैंक्शन रहता है तो आसानी से चीज़ होते हैं, भगवान का सैंक्शन नहीं है, जितना भी तुम कठोर परिश्रम करो ऊपर नीचे उल्टी भी कड़े हो जाओ फिर भी काम नहीं होगा, आपको आप देख सकते हैं। तो इस तरह डॉक्टर लोग भी जो हमको दवाई देते हैं मरीजों को, बताते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ऑपरेशन तो हम कर सकते हैं लेकिन आपको जान, आपके जान बचाने वाला हम नहीं हैं, अगर भगवान बचाना चाहते तो भगवान बचाएंगे। तो इस तरह हमें इस तरह की नशा जो है उसको उतरना चाहिए, ताकि हम भगवान के नाम को हम अनुभव के साथ, भावना के साथ हम पुकार सकते हैं। तो हम भौतिक पदार्थ, भौतिक जो क्षमताएं हैं उनको भी हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे जीरों का, पूज्यों का। इस दुनिया में अनेक लोग हीरो होते हैं और उन हीरों की नकल करने वाले भी अनेक लोग होते हैं, और वो हीरो जैसे बनने के लिए लेकिन ये दुनिया के सब हीरो बड़े जीरो बन जाते हैं अंत में, है? जीरो ही जीरो, क्योंकि उनके अंदर जो भी क्षमता है सब चला जाता है मृत्यु के समय, पता नहीं किधर गया, खत्म हो जाता है सब कुछ है? लेकिन उन जीरोस को भी हम लेकर हम क्या कर सकते हैं, उसके सामने एक डालो तभी उनका मूल्य बढ़ जाता है। इस तरह भगवान के साथ हमारे क्षमताओं का अगर हम जोड़ते हैं तभी उनका कुछ लाभ हो सकता है। चाणक्य का एक सुंदर श्लोक है, सब लोग बोलिए। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सद्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। इसमें बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, बताते हैं धनानी अपने धन को जीवितम, अपने जीवन को भी क्या करना चाहिए। प्राज्ञ का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करता है, पर अर्थे प्राज्ञ उत्सृजे, पर का मतलब है भगवान, पर अर्थे भगवान के लिए त्यागता है अपने प्राण को भी और अपने धन को भी, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे बताते हैं। सत निमित्ते वरम त्यागो, अच्छा है, वरम का मतलब है अच्छा है कि तुम इन चीज़ों को तुम भगवान के लिए त्यागो, इस तरह बताते हैं, नहीं तो वो अपने आप नाश हो जाएंगे। नाश होने के पहले पहले तुम क्या करो, इसको भगवान का अर्पण कर दो, ऐसे बताते हैं। धनानी जीवितम चैव, जैसे आप देख सकते हैं इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने शरीर को किसी न किसी व्यक्ति को देता है, देता ही है ज़रूर। कोई व्यक्ति है समाज सेवा के लिए अपने शरीर को अर्पण करता है, कोई व्यक्ति है अपने देश प्रेम के कारण देश को बचाने के लिए कारगिल वार में जाकर मरता है, तो देश के लिए अपने शरीर को देता है कोई ना कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति है कुछ चोरी करने के लिए और डकैत करने के लिए खून करने के लिए अपने शरीर को देता है, किसी गुंडों के पास काम करता है, और कोई ना कोई व्यक्ति है अपने शरीर अपने शक्तियों को अर्पण करता है अपने कंपनी के लिए, 12 घंटा 13 घंटा 15 घंटा काम करता है, अपने सारी स्वतंत्रता को दे देता है कंपनी को। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ के लिए अपने शरीर को प्रदान करते हैं। तो इधर वो चाणक्य के बताते हैं कि तुम्हारे शरीर को किसी न किसी व्यक्ति को देना ही है, अगर ऐसे देना ही है तो तुम सबसे परम श्रेष्ठ भगवान को क्यों नहीं देते, क्योंकि उस व्यक्ति को देने से तुम्हारे शरीर और धन इन सब चीज़ों को अर्पण करने से क्या होगा, तुमको मिलने वाला लाभ जो है वो भी पर लाभ होगा, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, पर व्यक्ति को तुम अर्पण करो तुमको पर लाभ प्राप्त होगा, इस भौतिक व्यक्तियों को अर्पण करो तुमको भौतिक लाभ होगा बस, और भौतिक इसके साथ चला जाएगा वो भी। इस तरह बताते हैं, दो उदाहरण बताते हैं, एक उदाहरण है बलि महाराज। बलि महाराज को जब वामन देव आकर पूछा, भिक्षा मांगा उन्होंने, 3 पग मुझे जमीन दो, शुक्राचार्य ने बोला नहीं देना चाहिए तुमको, ये तो साक्षात विष्णु है, तुमको धोखा दे देगा, सब सारे जीवन ले ले, सब सारे जमीन ले लेगा तुमसे और तुमको बोंडी बना देगा, तुम ऐसे भिखारी बन जाओगे, तो मत दो। तो बलि महाराज ने बोला, देखिए बड़े बड़े राजा लोग आकर गए हैं, जैसे शिबि चक्रवर्ती पहले, उसके बाद दधीचि ऋषि, तो शिबि चक्रवर्ती ने अपने ही शरीर से अपने जांग से मांस को काट कर दिया था दूसरे जीवों की भलाई के लिए। और अब दधीचि मुनि देखिए, दधीचि ऋषि वो तो महान ऋषि थे, उनके शरीर से अस्थि चाहिए था देवताओं को, तो देवताओं की भलाई के लिए वो मर गए, वो मरकर अपने अस्थि को दे दिया, अपने हड्डी को अपने शरीर से दे दिया। तो दूसरों के लिए काम करना चाहिए हमें, और इधर तो हम दूसरे साधारण आदमी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, भगवान खुद आए हैं, आप ही खुद बोलते हो कि भगवान आए हैं, तो ये सारे दुनिया की जमीन को उनको देने से भी क्या बुराई होने वाला है, अगर मैं मरूंगा तो मृत्यु के समय जमीन को हम छोड़ कर ही हम जाने वाले हैं, साथ में पॉकेट में डालकर नहीं लेके जाने वाले हैं, तो अभी इससे देने से मुझे क्या नुकसान होने वाला है। इस तरह उन्होंने पूछा, वॉट लॉस इज देयर इन गिविंग इट टू लॉर्ड, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वही सब किस चीज़ों के स्रोत हैं भगवान, उनको देने से क्या खोने वाले हैं, इस तरह उन्होंने पूछा। दूसरा है उदाहरण वृत्रासुर का। वृत्रासुर और इंद्र के बीच में जब लड़ाई चल रहा था, तो आपको मालूम है वृत्रासुर साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है वो? भगवान के महान महाभागवत भक्त हैं, जो चित्रकेतु है। चित्रकेतु को भगवान ने सोचा कि चित्रकेतु को भगवान ने देखा कि भक्त बन गया था वो, लेकिन वो विद्याधर लोक के स्त्रियों के साथ वो एक बार ऐसे आसमान में एक एरोप्लेन में उड़ रहा था, वो बहुत आनंद से अपने जीवन बिता रहा था। कभी कभी क्या हो जाता है, भक्ति में भी हमें सब चीज़ ठीक ठाक चल रहे हैं, हम बहुत एक तरह का थोड़ा संतुष्टि आ जाता है और हम परिश्रम नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए, सोचते हैं कि अभी सब ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम, अभी हमें समझ लिया कि जीवन को जितना हम सरल रखेंगे उतना आनंद से हम बिता सकते हैं। तो उसका भी जीवन ऐसे हो चुका था, वो बहुत आनंद में जीवन बिता रहा। तो भगवान ने सोचा कि अरे ये कितना साल इधर बिताने वाला है भौतिक दुनिया में, इस तरह वो नाम तो ले रहा है लेकिन लगता है कि ये ऐसे जीता रहेगा बहुत समय तक, तो इसको जल्दी ही जल्द भगवत धाम लाना चाहिए उसको, इसके लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। इस तरह सोचकर भगवान ने क्या किया, एक योजना बनाई। उस योजना के कारण उसने एक कथाकथित अपराध किया शिव जी के ऊपर, जिसके कारण उसको वृत्रासुर नाम का असुर का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन शरीर तो था असुर की, लेकिन चेतना था भगवान के महान महाभागवत भक्त की। जैसे भरत महाराज को शरीर प्राप्त हुआ था एक हिरण की, लेकिन अंदर ही अंदर हृदय में उनको भगवत भावना था उनको, इस तरह इधर भी चित्रकेतु को शरीर मिला था वृत्रासुर का, लेकिन हृदय में भगवान का दिव्य चेतना था उसके अंदर। तो उनके लड़ाई में क्या होता है, भगवान ने बोला था इंद्र को, हे इंद्र तुम तो डरपोक हो, इतना डरते हो, तुमको जीवन को बचाना है, तुम्हारी पदवी को बचा कर रखना है ना, ठीक है तुम जाओ दधीचि ऋषि के पास जाकर उनके हड्डी को ले लो और एक वज्र बनाओ और उस वज्र से तुम वृत्रासुर को मार सकते हो, अगर तुम मार सकते हो तो मारने के बाद तुम्हारी इंद्र पदवी तुम्हारे पास रहेगा। बस इंद्र बहुत खुश हो गया और वो युद्ध किया वृत्रासुर के साथ। लेकिन भगवान को मालूम था कि वृत्रासुर मारा जाएगा इस युद्ध में, और मरने के बाद वो किधर जाएगा, वो भगवत धाम लौटेगा वो, भगवान को मालूम था अच्छी तरह। और वृत्रासुर को भी बहुत खुश, वो खुश में था, क्योंकि मैं उसने बोला इंद्र को, अरे इंद्र मारो मुझे जल्दी ही जल्द, क्योंकि जब मैं मर जाऊँगा मैं भगवत धाम लौट जाऊँगा, तुम जीवित रहोगे लेकिन तुम स्वर्गलोक में रहोगे, मैं मरूंगा लेकिन मैं भगवत धाम लौटूंगा, है ना। तो उधर अपने शरीर को भी देने के लिए वो तैयार था वृत्रासुर ऐसे। तो स्वर्ग में रहने से क्या फ़ायदा, स्वर्ग में भी इंद्र को भगा देते हैं कभी कभी असुर लोग आकर उधर भी। तो इस तरह हम उदाहरण देखते हैं बलि महाराज और वृत्रासुर इन लोगों के जीवन में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है कि हमें आत्महत्या करना है, हमारे शरीर को देना है, ये मतलब नहीं है। हमारे प्राण और शरीर को देने का मतलब क्या है, हमारे जीवन को हमारे शरीर को पूर्ण तरीके से भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, ये इसका मतलब है। इफ़ आई नो दैट दिस बॉडी इज डिस्ट्रक्टेबल देन वाई शुड आई नॉट कम्प्लीटली यूज इट इन द फायर ऑफ संकीर्तन, दैट इज़ द पॉइंट। हमको मालूम है युक्त वैराग्य, हमने सुना है उसके बारे में। अभी अगर मेरे पास जो भी पदार्थ हैं चीज़ें हैं उसको भगवान की सेवा में जुड़ाना जोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य। अभी मेरे पास पेन है, पेन से महामंत्र हम लिखते हैं, हमारे पास कंप्यूटर है उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह शरीर भी एक तरह का चीज़ है जो भगवान ने हमको दिया है, उसको भी पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। तो युक्त वैराग्य जो है इसको सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत पैसा है, हम उस पैसे को खुद के लिए रखते हैं और भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण करते हैं, तो भगवान तुरंत जान जाएंगे, भगवान समझ जाएंगे कि ये धोखा दे रहा है मुझे। तो युक्त वैराग्य मतलब है हमारे पास जो भी है उसको अर्पण करके हमें हमारे समय, हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे वचन वाणी, हमारे धन दौलत सामग्रियां सब चीज़ों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए बोला गया मेटीरियल असेट्स कैन बी कृष्णाइज्ड, ऐसे बताया गया है। तो इस तरह धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञोचित, जैसे बताते हैं। नेक्स्ट सेकंड पेज देखें, सेकंड पेज में तीसरा पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट, मेटल एडवांसमेंट लीड्स टू मिजरीज एंड इम्पीड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मेटीरियल असेट्स फॉइल स्पिरिचुअल एनर्जी, अब्सॉर्ब इन स्पिरिचुअल, कीप अवे फ्रॉम मटेरियल। ये तीनों पॉइंट जो हैं दे आर ऑल टुगेदर, तो साथ में हैं तीनों पॉइंट, एक ही चीज़ के बारे में बात चल रहा है। ये भौतिक पदार्थ से जो शरीर और मन बुद्धि अहंकार बनाया गया है वो भौतिक पदार्थ है, और आत्मा दिव्य है, चेतन वस्तु है, दिव्य है आत्मा। इनमें फर्क क्या है आप देखेंगे, भौतिक पदार्थ हमेशा, सी द मैटर इज ऑलवेज डार्क, द स्पिरिट इज ऑलवेज लाइट एंड ब्रिलियंट, द मैटर इज हेवी एंड स्पिरिट इज वेरी लाइट, द मैटर इज ऑलवेज एंटैंगलिंग, स्पिरिट इज ऑलवेज लिबरेटिंग, मैटर ऑलवेज लीड्स टू मिजरी एंड स्पिरिट लीड्स टू ब्लिस। तो आप देखेंगे दोनों में बहुत फर्क है, भौतिक और आध्यात्मिक, आत्मा और शरीर, भौतिक शरीर। तो प्रभुज बताते हैं कि जितना हम भौतिक कार्यकलापों में हम फंसेंगे उतना हम इस दुनिया में हम दुखों को भोगेंगे। एक बार हमने एक प्रवचन सुना, एक पति पत्नी जो शादी करते हैं उनके जीवन में अनेक समस्याएं आते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि शायद हमारे परिवार में ही झगड़ा है, लेकिन हर परिवार में झगड़ा होता ही है ज़रूर। इस दुनिया में कोई भी परिवार नहीं है जिधर झगड़ा नहीं होता है। कारण क्या है, दोनों आत्मा हैं, दो शरीर में, दोनों का अहंकार है, अलग अलग अहंकार है, इसलिए होता ही है। तो एक मैंने सेंटेंस सुना उस लेक्चर में, द मेटीरियल साइड ऑफ मैरिज इज ऑलवेज मिसरेबल। ये हमेशा मैं याद रखा है इस सेंटेंस को, द मेटीरियल साइड ऑफ मैरिज इज ऑलवेज मिसरेबल। तो ये शादी जब करते हैं स्त्री पुरुष, उनके भौतिक साइड जो है, अगर वो भौतिक चेतना से जीते हैं तो ज़रूर उनको समस्या होने ही वाला है। लेकिन पति पत्नी जो है, जब भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जीते हैं दिव्य चेतना में, आर यू लिविंग ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, आर यू लिविंग ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, इफ़ यू लिव इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म यूर फैमिली विल बी इन ब्लिस। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, शाम को जब आता हूँ घर में, गृहते गोलोक भाई, गोलोक वृंदावन जैसे दिखता है मेरे घर शाम को, सब बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन अगर पति पत्नी बच्चे सब भौतिक जीवन को प्रधानता देते हैं तो क्या होगा, उधर झगड़ा ही झगड़ा है, झगड़ा होगा, परिश्रम होगा, लोभ भावना होगा, असंतुष्टि होगा, और मानसिक तनाव होगा, और झगड़ा एक के बीच झगड़ा, ये सब होगा जितना हम भौतिक तरीके से हम जीवन जीते हैं। इसलिए देयर इज मेटल एडवांसमेंट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, हम भौतिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग ये गलत करते हैं, क्या है, वो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हम भौतिक जीवन में आगे बढ़कर थोड़ा सेफ्टी के लिए हम बचाव करके रखेंगे, उसके बाद हम आध्यात्म जीवन में पूरे तरीके से हम डूब जाएंगे और हम आजीवन हम भगवान के लिए हम समय दे देंगे, इस तरह कभी कभी लोग बोलते हैं। तो अनेक लोगों को लगता है कि भौतिक जीवन में जो थोड़ा समस्या है तो उसको अभी थोड़ा समय देंगे तो सुलझ जाएंगे उसको, उसके बाद हम बहुत समय मिलेगा हमें भगवान के लिए। लेकिन आप देखेंगे भौतिक जीवन की समस्या ऐसा है कि एक समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय ढूंढो तो वो उपाय लागू करते समय दूसरा नया समस्या निकलता है, वो नया ही निकलता है जिसके बारे में आपका अनुभव ही नहीं है, तो उसको सुलझाने के लिए जाओ वो और दो दो चार चार आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है वो, और मल्टीप्लाई होते जाते हैं वो अंत ही नहीं होता है वो। भौतिक जीवन ऐसा, भौतिक समस्याएं ऐसा है। और देखिए अभी अमेरिका जैसे देश में गर्मी पैदा करना कठिन है क्योंकि बहुत ठंडा है उधर, तो वो लोग सोच रहे थे कि हम ऐसे कुछ आविष्कार करेंगे ऐसे चीज़ को जिससे हमें गर्मी पैदा किए बिना हम अच्छा कुकिंग कर सकते हैं। तो अभी नया टेक्नोलॉजी निकला है, शायद आपके आप में से अनेक लोगों के घर में होगा वो माइक्रोवेव ओवन। आपने सुना है माइक्रोवेव ओवन, सबको मालूम है ना। तो ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, जब हम चेन्नई में गए थे हमारे रिश्तेदार के घर में गए थे तो वो लोग सब ऐसे प्लास्टिक प्लेट में लेके आए, आपने देखा है ना, उसके अंदर प्लास्टिक में रखते हैं सब। प्लास्टिक है क्या वो, प्लास्टिक ना, प्लास्टिक जैसा होता है प्लेट, उसमें अंदर रखते हैं निकालते हैं। मैंने पूछा क्यों आप ये तो अच्छा नहीं है, हम लोग ये स्टेनलेस स्टील यूज़ करना चाहिए। वो बोले नहीं नहीं ये माइक्रोवेव ओवन में यही रखते हैं। तो बाद में हमने सुना हमारे एक भक्त जर्मनी गए, ये श्रवण वैद्या प्रभु, तो वो खुद रिसर्च करते हैं ये एक फील्ड में, तो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में उन्होंने रिसर्च किया। तो उन्होंने लिखा है, मुझे एक खत लिखा है कि आजकल वैज्ञानिक लोग जर्मनी में शोधन करके निकाला है कि ये माइक्रोवेव ओवन से कुकिंग किया हुआ पदार्थ को खाने के लिए जब दिया कुछ बिल्लियों को, सब बिल्ली मर गए, उसको खाकर मर गए। अगर हम लोग मरे नहीं तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो मनुष्य भी मरने की संभावना है वो बोलते हैं। कारण क्या है, उसमें से माइक्रोवेव रेडिएशन जो आता है, जो वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन कम्स आउट, वो रेडिएशन को रेडिएशन तो कुकिंग किया जाता है। उतना नहीं, उन्होंने बोला कि माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग किया हुआ पानी जो है ना, उसको जब कुछ पौधों को डाला था उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, सबके सारे पौधे वो सूख गए पूरा, पूरे के पूरे। तो अभी बोला कि अनेक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि माइक्रोवेव से कुकिंग किया हुआ पदार्थ जो है वो अच्छी तरह कुकिंग नहीं होता है, वो उसमें जो अंदर जो ग्रेन्स होता है ना ऐसा ही रहता है, वो खाने के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन अंदर जाकर आपको पचन नहीं होगा, आपको पचन के लिए बहुत पचन क्रिया को डबल ट्रिपल एनर्जी लगेगा, वो बहुत कठिन है। तो इतना बड़ा कतरा है लेकिन वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं उसको सप्रेस कर रहे हैं, बोलो मत किसी को, क्योंकि पूरा माइक्रोवेव कंपनी का ये जो बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा वो, है ना। तो वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं लोगों को। देखिए तो बोलने का मतलब क्या है, इस भौतिक दुनिया में भौतिक तरीके से तुम आप देखेंगे कि हम उपाय ढूंढना चाहते हैं, वो कभी होने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो अमेरिकी लोग सोच रहे हैं कि अभी देखो गर्मी पैदा किए बिना हम आसानी से माइक्रोवेव के द्वारा हम कुकिंग करते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रॉब्लम दूसरे तरह के प्रॉब्लम आते हैं, हम देख सकते हैं। तो इस भौतिक दुनिया में कोई भी कष्ट से बच नहीं सकता है। अगर आप ये कष्ट से बच गया तो पीछे जाकर आगे से दूसरे कष्ट के रूप में आ जाएगा वो, उससे हम बच नहीं सकते हैं इस दुनिया में। तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, अगर आप बारिश के दिन आप बाहर चल रहे हो, कभी कभी बारिश जब आ जाता है लोगों को बुरा लगता है, सुबह तो एकदम क्लीन स्काई रहता है, ऑफिस के लिए आप निकलते हैं तुरंत बारिश शुरू हो जाता है, तो लोग एक हाथ में छतरी ले लेते हैं, बोलते हैं कि क्या है बारिश आ गया सही टाइम पर। ऑफिस में जाने के बाद आप देखते हैं बारिश बंद हो जाता है, अब शाम को निकलते हैं ऑफिस से तुरंत बारिश शुरू हो जाता है, आजकल ऐसे ही होता है ना। तो अगर बारिश होता है तो बारिश से आप कैसे बच सकते हो, शायद आप एक छोटे छतरी ले सकते हो, लेकिन छतरी लेने से भी क्या होता है, कम से कम आपके पांव जो है वो भीग जाता है, आपके नीचे के अंग जो हो तो भीग जाते हैं, शायद थोड़ा थोड़ा भीगता नहीं लेकिन ज़्यादा भीग जाता हो। लेकिन एक उपाय है, अगर आप बादल के ऊपर चले जाओगे तो तभी आप बारिश से भीग नहीं जाओगे। इसलिए बताते निवृत्त गुणवृत्त, ये तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ तभी इस भौतिक दुनिया के किसी भी तरह का समस्या को तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा होने के लिए क्या है, हमें भगवान के साथ नाता जोड़ना है, रिश्ता को पुनर्स्थापित करना है, तभी हम इस भौतिक दुनिया के तीन गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन यह भौतिक एडवांसमेंट जो है, भौतिक प्रगति, वो कुछ काम का नहीं है, वो जितना भी हम आगे बढ़े वो एक के बाद एक समस्या आते ही होने वाला है। आजकल देखिए वैज्ञानिक लोग इतने प्रगति कर लिया है लेकिन साथ साथ समस्या भी बढ़ गया है। एक मोबाइल वगैरह जो है बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। आजकल मैं पढ़ा है एक पेपर में, एक मोबाइल जो है एक पिक्चर उन्होंने लिया है, जो बच्चा ऐसे रखता है उससे इतना रेडिएशन निकलता है उसके दिमाग को पिघल सकता है वो, बच्चे के दिमाग को। तो बच्चा को 14 साल तक देना नहीं चाहिए मोबाइल, सर ये कान के पास रखना नहीं चाहिए। अभी 14-15 साल के बाद अभी हम सोचेंगे, हम तो अभी बड़े हो गए, हमारा जो स्कल, व्हाट इज स्कल, हाँ खोपड़ी एकदम हार्ड हो जाता है, अब स्ट्रांग हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम सुन सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल रख कर देखिए, 2-3 मिनट आप बात करिए, पूरा गर्म हो जाता है। अनुभव आपका क्यों गर्म होता है? कुछ रिएक्शन तो हो रहा है अंदर भी, है? अंदर रिएक्शन होता है। तो आधुनिक आदमी अलग अलग चीज़ों को आविष्कार करके निकाल, ढूंढ निकाल रहा है वो। फिर भी समस्याएं कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन समस्या बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से समस्याएं, खास करके मानसिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए नीचे देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, आफ्टर दोज थ्री पॉइंट्स, द लिविंग दैट पॉइंट, लॉर्ड इज बियॉन्ड थ्री मोड्स, लिविंग दैट पॉइंट, द नेक्स्ट टू पॉइंट्स, हैंकरिंग इज फ्रॉम थ्री मोड्स, राइज अबाव इट। लॉर्ड नेवर अट्रैक्टेड बाई मोड्स, लिविंग एनिटी हैज द टेंडेंसी टू बी अट्रैक्टेड बाई मोड्स। The hankering is due to an interaction of the three modes of nature. हमारे हृदय में एक तरह का लोभ भावना है, हमेशा भौतिक सुख के लिए। अभी देवहूति बोल रही है एक श्लोक में, भागवत के तीसरे स्कंद में, वो बोलती है, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांदम तमः प्रभो। वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं, मुझे तो मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध जीव हूँ, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ किसमें, एक भौतिक शरीर में। इसके कारण मेरे भौतिक चेतना के कारण मेरे इंद्रिय तर्पण की इच्छा होता है, उसके कारण। हमको अच्छी तरह मालूम है कि हम आत्मा हैं, हमारा आदान प्रदान आत्मा के स्तर पर भगवान के साथ होना चाहिए, तभी हमें असली आनंद प्राप्त होगा, है ना। लेकिन हम भौतिक चेतना के कारण कभी कभी भक्तिमय जीवन में आने के बावजूद भी हम भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, हम भौतिक चीज़ों की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। तो भक्त ऐसे होना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्तों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को एक बार बोला ऐसे, डोंट गेट वेट, ये बहुत फेमस प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशन है। उसे बोलते हैं, तुम भीग मत जाओ, किसमें, भौतिक चेतना में। ऐसे जैसे ये जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी जब सूखा रहता है तभी आप इसमें डालिए, फर्नेस में डालिए, जैसे बॉयलर में, नहीं तो फर्नेस में डालिए, एकदम अच्छी तरह वो अच्छा साउंड आता है और एकदम जलता है बहुत अच्छी तरह, है ना। लेकिन अगर आपने घर के पीछे डालकर रखा था, बारिश आ गया, पूरा भीग गया वो, उसके बाद अब लेके आकर फर्नेस के अंदर डालो और उसमें आग लगा हुआ, क्या होता है, वो आग आता ही नहीं उसमें, नहीं तो पहले धीरे 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 धुआं निकलता है, इतना धुआं निकलता है वो नाक के अंदर चला जाता है, आंखों के अंदर चला जाता है, आंख लाल लाल हो जाते हैं और आंसू आता है आपको, और आप सबको डांटते हैं, कोसते हैं, लेकिन वो जलता नहीं वो, है? इस तरह जब हम सूखे लकड़ी से पानी को मिलाते हैं तभी तकलीफ होता है हमको। इस तरह जब हम आध्यात्मिक जीवन में भौतिक इंद्रिय तर्पण को मिलाते हैं तभी आध्यात्मिक जीवन में भी तकलीफ होता है, यही कारण है। अभी अनेक लोग बोलते हैं, क्या है ये कृष्ण परमृत इतना कठिन है, वो कठिन नहीं है, कठिन हम बनाते हैं उसको। कैसे हम कठिन बनाते हैं, क्योंकि हम इंद्रिय तर्पण को भी उससे मिलते हैं, दोनों को मिलवा कर हम, हमको दोनों चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, माया भी चाहिए कृष्ण भी चाहिए। अभी दोनों मायादास कृष्णदास हम दोनों बनना चाहते हैं, वो दो नावों में, एक नाव में एक पैर और दूसरे नाव में दूसरा पैर, दोनों का रखो और दोनों नाव दो अलग दिशा में जाते हैं, हम बीच में हम फट जाते हैं, ऐसा हमारा हाल है। इसलिए पपज बताते हैं कि डोंट गेट वेट इन योर कॉन्शियसनेस, आप चेतना को शुद्ध रखो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये समझना चाहिए कि जब हम भौतिक दुनिया में जीते हैं, भौतिक दुनिया का हाल ही ऐसा है कि अगर हम सतर्क नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, तो आसानी से भौतिक चेतना हमें पकड़ लेगी। जब हमारा अनुभव होता है, आपने देखा होगा, जब मंदिर में आते हैं, भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बातें करते हैं, तभी दिव्य चेतना रहता है। जब हम भौतिक वातावरण में जाते हैं तभी चेतना भौतिक हो जाता है, चेतना भी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह उसके कारण हम कुछ गलत चीज़ों को हम ले लेते हैं अपने दिमाग में, उसके कारण प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बताया गया है कि शुरुआत से ही हमारे चेतना को मोमेंट टू मोमेंट कॉन्शियसनेस वी शुड प्रिजर्व, हर क्षण हमारे चेतना को बचाना चाहिए। जैसे अगर कोई बुला रहे हैं आपको, आइए हम थोड़ा निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तुरंत पूछना चाहिए किधर निकलते हैं, पूछना चाहिए किधर जाना चाहते हो, क्या सिनेमा जाना है नहीं तो मंदिर में जाना है, किधर जाना चाहते हो। अगर कोई बोलते हैं ठीक है आइए, थोड़ा खाएंगे, क्या खाएंगे, प्रसाद खाएंगे या जो प्रसाद नहीं है ऐसे। तो जो भी लोग आपको बुलाते हैं कार्य में, कार्य करवाते हैं आपके द्वारा, तो हमें पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर क्षण भक्त को सतर्क करना चाहिए। एक बार वेनिस में, कैलिफोर्निया में, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ समुद्र की तट में ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। तो एक भक्त ने बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी टुडे द टाइड्स इन द ओशन आर लिटिल लार्जर, सो इट्स अ लिटिल डेंजरस टुडे, आज थोड़ा खतरनाक है क्योंकि समुद्र के जो लहरें हैं थोड़े बड़े हैं, आज साधारण तरीके से इतना बड़ा लहरें आते नहीं, आज थोड़े बड़े हैं। सो प्रभुपाद ने बोला ये लहरें छोटे हो बड़े हो, समुद्र ही खतरे का चीज़ है, वेदर इट बी स्मॉल और बिग इट्स अ डेंजरस थिंग। तो तभी प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया, ऋणशेष अग्निशेष व्याधिशेष तथैव च पुनश्च वर्धते यस्मात् तस्मात् शेषम च कार्येत। तो उन्होंने बोला ऋणशेष तीन चीज़ इस दुनिया में है, जब वो छोटे होते हैं तभी उनको निकाल देना चाहिए। ऋण शेष, ऋण का मतलब है कर्जा, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है उसको तुरंत निकाल देना चाहिए, क्यों नहीं तो देखेंगे कर्जा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इंटरेस्ट बड़ा हो जाता है, इंटरेस्ट आप पे करते जाते हैं, कभी कभी इतना कॉम्पाउंडेड इंटरेस्ट हो जाता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे दुगुना त्रिगुना हो जाता है वो, आप पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए डेट को नहीं रखना चाहिए। ऋणशेष है, अग्निशेष, अग्नि भी ऐसा है, एक छोटा अग्नि है, चिंगारी है, लेकिन छोड़ दो भूल जाओ वो क्या पूरा सारे जगह को जला देता है, बाद में वो राग बना देता है सब चीज़ों को। व्याधिशेष, व्याधि भी ऐसा है, शुरुआत में आपको स्निफिंग आता है, यू आर स्निफिंग फर्स्ट, देन द स्निफल टर्न्स इनटू यू नो फ्लू, देन फ्लू में लेट टर्न इनटू टाइफाइड और समथिंग, इट में बिकम मोर डेंजरस डिजीज। तो छोटे से जो शुरू होता है ना वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है, बाद में आदमी मर ही जाता है कभी कभी वो व्याधि से। तो कुछ लोग सही, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, निप इट इन द बड, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यू हर्ड दिस, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो प्रभुपाद जी भी एक कोट किया, बोला उन्होंने पुनश्च वर्धते यस्मात्, वो बढ़ जाएंगे। तो हमारे ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे मनुष्य का टेंडेंसी क्या है, अगर कुछ चीज़ छोटा है तो वो सोचते हैं कि ये छोटा है, ये क्या बड़ी प्रॉब्लम है, इस तरह हम सोचते हैं। अभी उदाहरण के लिए किसी भक्त के बारे में हम कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ एक अपराध के रूप में आकार ले सकता है बाद में, और उस अपराध के कारण बाद में बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा और उसके कारण एक व्यक्ति का पतन हो सकता है। इस तरह कोई देखता है कि एक दिन जब पूरा नहीं हुआ, 14 माला हुआ, 2 माला बच गया, अभी रात को 11 बज गया, नींद आ रहा है, सोचते हैं कि सुबह हम कर लेंगे 2 माला, कल साथ में कर लेंगे, तो कल 16+2 18 हो गया, अभी दूसरा दिन भी 14 ही हुआ, 4 माला बचा है, तो आज शाम को आकर कर लेंगे, शाम को भी होता नहीं कभी। तो आप देखेंगे कभी कभी माला को जो जिनका छोड़ने का आदत है वो धीरे धीरे छोड़ 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 कर अंत में माला ही बंद हो जाता है ऐसे, हाँ तो ये बुरा आदत है। इस तरह की छोटे आदत जो है ना उनको पहले से कटना चाहिए, उनको शुरुआत में से। अगर एक दिन 2 माला छूट गया ना आपको, हुआ नहीं, अगले दिन आप क्या करना चाहिए, 16 माला के बदले 25 माला कर देना चाहिए। यू हैव टू हिट इट विद अ वेरी ग्रेट फोर्स दिस बैड टेंडेंसीज, ये बुरा हैबिट जो है ना, आदत, उनको इतना मारना चाहिए कि वो कभी दिखेंगे नहीं बाद में। तो दो माला तुमने नहीं किया ना, दो माला के बदले 20 माला कर लो अगले दिन, 20 माला प्लस 16 माला वो कर लो अगले दिन, तो कभी छोड़ेंगे नहीं। आपको मालूम है हर माला जो मैं छोड़ता हूँ किसी दिन कारणवश, एक एक माला के लिए 10-10 माला करूँगा अगले दिन। ऐसा हमें बना लेना चाहिए मन को, तभी छोड़ेंगे ही नहीं। देन यू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू टू निप इट इन द बड पहले से। इस तरह कभी कभी हम भक्त तो होते हैं, हम माला करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी कभी बर्ताव में, आई विल टॉक इन इंग्लिश लिटिल बिट, इट्स डिफिकल्ट इन हिंदी, डीलिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, वन हैज टू बी रियली ऑनेस्ट एंड सिंसियर, whether one is doing it for the sake of service or one is doing it for the sake of enjoying. So for example, we are preaching to so many women and so many men, people of different age groups and different levels in society. So one has to be very careful in seeing that we are actually doing it for Krishna and Guru. We should not deal with the members of the opposite sex with the desire to enjoy their association. By doing that, what will happen? The seeds of kama karma bij will be developing in the heart without a knowledge. How many seeds are growing? तो मैं बोल रहा था पुरुष स्त्री के बीच में उतना ही संबंध होना चाहिए जितना सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए करना होता है उतना है। क्योंकि अगर हम पुरुष स्त्री के बीच में जो फेमिलियरिटी, व्हाट इज फेमिलियरिटी, परिचय होता है, निकटता बढ़ता है, वो आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत खराब है, बहुत बड़ा कतरा है। इधर हाल में हम जो भी बैठे हैं, हम सब आत्मा हैं, अब सब आत्मा प्रकृति के अंडर में आते हैं, भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं। फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि पुरुष के शरीर में कुछ आत्माएं बैठे हैं और कुछ आत्माएं बैठे हैं स्त्री के शरीर में, इसलिए पाबंदी वगैरह रखा गया है शास्त्र में, स्त्री पुरुष के बीच में डिफरेंस वगैरह देखना चाहिए। ये जैसे हमारे भक्तप्रहलाद स्कूल में भी 11, 10, 11, 12 तक बच्चों को साथ में हम रख सकते हैं, 12 के बाद 13 टीन आ गया, शुरू हो गया, तुरंत उनको सेपरेट करना चाहिए, दे कैन नॉट बी टुगेदर, इसलिए टीन एज बॉयज सेपरेटली रखा है उसको। तो अगर कोई सोचेगा कि ये क्या बड़ी बात है, थोड़ा बहुत ऐसे बात कर लेंगे तो क्या है इसमें, अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा को मन में रखते हुए स्त्री पुरुष बातें करते हैं कृष्ण को बाजू में रखते हुए, उनके मन में काम वासना बढ़ेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, थिंकिंग देन फीलिंग एंड देन विलिंग। पहले चेतना में थिंकिंग आता है, गलत इच्छाओं को मन में रखते हुए हम कुछ सोचते हैं उन चीज़ों को, उसके बाद फीलिंग आता है। तो हमें आध्यात्मिक फीलिंग आने के बदले भौतिक फीलिंग आएगा। हम मंदिर में क्यों आते हैं, हम एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए आते नहीं हैं मंदिर में, हम भगवान से आकर्षित होने के लिए आते हैं मंदिर में। तो हमारा फीलिंग किसके पास होना चाहिए, भगवान की ओर होना चाहिए फीलिंग, नहीं तो मैन शुड बी बिकमिंग अट्रैक्टेड टू द सीनियर मैन, वुमन शुड बिकम अट्रैक्टेड टू द सीनियर वुमन, वी शुड बी लाइक दैट। तो अगर हम इसको बोलकर हम स्त्री पुरुष के बीच में फ्रीली हम, ये ब्रह्मचारियों के लिए ही नहीं लेकिन गृहस्थियों के लिए भी है, देर हैज़ टू बी सच काइंड ऑफ रेस्पेक्टफुल डीलिंग बिटवीन मैन एंड वुमन। इवन इफ इट इज़ अ लिटिल फॉर्मल इट इज़ सेफर, बट इफ इट बिकम्स टू इनफॉर्मल एंड सच टू मच फेमिलियरिटी इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज वॉट बिगिन्स इन दिस मैनर कैन लेटर ऑन टेक द शेप ऑफ अ ग्रेट डिजास्टर भविष्य में, इसलिए निप इट इन द बड, शुरुआत में ही इन चीज़ों को काटना चाहिए। तो इसलिए जीव के अंदर ये टेंडेंसी है, क्या है वो टेंडेंसी, भगवान 3 गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, जीव भी गुणातीत है, लेकिन भगवान और जीव में क्या फर्क है, भगवान गुणातीत हैं लेकिन उनको गुणों के अंदर फंसने का थनिक भी चांस नहीं है भगवान को, लेकिन जीव भी गुणातीत है लेकिन वो गुणों में फंसने का संभावना है। हम कैसे इसको हम समझ सकते हैं, अपने चेतना को ही हम देख सकते हैं। अभी हम सब भक्त हैं, हम माला करते हैं, शास्त्र का पठन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, क्या कोई हम ऐसे बोल सकते हैं कि कभी भी मेरे मन भौतिक दिशा में जाता नहीं है? क्या हम बोल सकते हैं? इतना दीक्षा लेने के बाद भी, सालों साल भक्ति करने के बाद भी कभी कभी गलत चीज़ों को मन स्मरण करता है। तो आपने सुना होगा जैसे प्रतिष्ठानापुर के ब्राह्मण है ना, तो वो मानसिक पूजा किया भगवान को, अब भगवान को पूजा बनाकर उसने स्वीट रेस किया था, तो स्वीट रेस को मन ही मन उसने छुया, क्या हुआ, उसकी उंगली जल गया उसको। इससे हम क्या समझते हैं, आपके मन में जो सोच चल रहा है वो शरीर में भी आ जाएगा। वो प्रभा जी बोलते हैं कभी कभी रात में कोई स्वप्न करता है, बाघ उसको पीछे करता है, शेर उसके पीछे करता है, तो उठकर देखता है, देखता है कि उसके शरीर में पसीना छूटता है। कैसे है? क्योंकि मानसिक स्तर में जो होता है वो शारीरिक स्तर पर भी वो आ जाएगा। वॉट एवर इज देयर इन द माइंड विल बी ट्रांसलेटेड इन टू द बॉडी ऑल्सो, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो प्रभा जी ये भी बोलते हैं पुरुष स्त्री के संबंध के बारे में, अगर कोई मानसिक स्तर पर विचार करता रहता है तो उसको शारीरिक स्तर पर भी बदलावट होता है। प्रभा जी बताते हैं चैलेंज, हरे कृष्ण चैलेंज किताब में बताते हैं ये कन्वर्सेशन में। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, वी हैव टू फाइन ट्यून अवर मेंटल कल्चर, अवर कल्चर ऑफ अवर माइंड। तो जब हम जितना हम गुणातीत रहते हैं मानसिक स्तर पर, उतना हम शारीरिक स्तर पर भी हम गुणातीत रह सकते हैं। प्रभा जी ऐसे व्यक्ति थे, हर क्षण वो कृष्ण के बारे में बोलते थे। अगर उनके भक्त भी कृष्ण को छोड़कर दूसरा कुछ बातें बकवास कुछ करते थे तो उसको भी प्रभा जी भगवान से जोड़ते थे। उदाहरण के लिए एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभा जी को, प्रभा जी को बोल रहे थे जब वो प्रभा जी थे हवाई में थे, तो एक भक्त बोले प्रभा जी को, प्रभा जी इधर बहुत मच्छर हैं इधर हवाई में, तो आप कैसे सोते हैं मच्छरदाना के बिना, आप ऐसे ही सोते हैं बाहर? तो प्रभा जी बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो काटते नहीं, आप लोगों को क्या मच्छर काटते हैं रात को, ऐसे पूछा प्रभा जी ने। भक्त बोले हाँ प्रभा जी, सब भक्तों को बड़े बड़े बाइल हो गया, उनके शरीर में मच्छर काटते हैं। तो वो भक्त ने बोला प्रभा जी को, लगता है कि ये मच्छर जो है ये जान लिया कि आप शुद्ध भक्त हैं इसलिए आपको काटते नहीं, इसलिए आपको छोड़कर हम सबको काटते हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो प्रभा जी बोल रहे थे लेकिन कलकत्ता वाले मच्छर जो उनको मालूम नहीं है, वो उधर मैं जब कलकत्ता में रहता हूँ उधर वो मुझे काटते हैं वो उधर, ऐसे बोल रहे थे। तो उनके बात में आप देखेंगे कुछ ना कुछ जुड़ा आ जाएगा भक्ति के संबंध में। प्रभा जी के साथ जो भी किसी भी बात करते थे, तो किसी ने पूछा दूसरे टाइम प्रभा जी को, प्रभा जी भगवत धाम में क्या मच्छर हैं, हमें इस दुनिया में इतने मच्छरों से हमको सहन करना पड़ता है? तो प्रभा जी ने बोला नहीं नहीं उधर कुछ मच्छर नहीं है, अगर मच्छर होते भी तो वो काटते नहीं, ऐसे बोला प्रभा जी ने, क्योंकि भगवत धाम में कोई दूसरे को तकलीफ नहीं देते हैं उधर, ऐसे बोला। दूसरे परिस्थिति में किसी ने पूछा प्रभा जी को, प्रभा जी आर मस्कीटोस इन द गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन क्या मच्छर हैं उधर? प्रभा ने बोला इफ देर आर दे ऑल आर चैंटिंग हरे कृष्णा, अगर उधर है भी तो वो सब मच्छर भी हरे कृष्णा गाते होते थे उधर, ऐसे बोलते। तो बोलने का मतलब क्या है, प्रभा जी हरेक परिस्थिति को दिव्य बनाते थे, किसी भी परिस्थिति को। ही नेवर अलाउड पीपल टू रिमेन अनकृष्णा कॉन्शियस। हमारा भौतिक चेतना ऐसा है कि आध्यात्मिक मंदिर में आकर भी हम उस वातावरण को दूषित करके हम भौतिक विचारों को मन में ला सकते हैं, लेकिन प्रभा जी भौतिक लोगों के बीच में रहते हुए न्यूयॉर्क में बावरी में रहते हुए उनको आध्यात्मिक प्रभाव किया उनके ऊपर। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसी द लास्ट थ्री पॉइंट्स, लॉर्ड एंड डिवोटी बोथ बियॉन्ड मोड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर। यही मैं बता रहा था पहले, भीष्म पितामह और कृष्ण के बारे में बोल रहा था, लॉर्ड एंड द डिवोटी आर बियॉन्ड द मोड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर, बट मटेरियल बॉडी अवेज दोज विद मटेरियल डिजायर। हर एक भौतिक इच्छा के लिए हमें भौतिक शरीर प्राप्त होगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, प्रॉपर सेइंग मेन बिजनेस ऑफ लाइफ इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। सेकेंड पॉइंट, मेन बिजनेस ऑफ लाइफ इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। See, Krishna says, one who tries to approach me to become Krishna conscious, but at the same time wants to become materially happy, he is not very intelligent. He is wasting his time. So Prabhupada is saying, our main business is to become Krishna conscious. That is the main business of human life. If we waste our time striving for material improvement and forget to chant Hare Krishna, that will be a great loss. देखिए कंपनी आपको ये कार देता है किस लिए ताकि आप कार लेकर आप घर जा सकते हैं है ना उसलिए कार देता है तो कार जब हमें प्राप्त होता है कार में हम पेट्रोल डालते हैं ज़रूर नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगा हम इस तरह हमारे शरीर को भी कार से तुलना करते हैं प्रभुपाद जी इसमें भी भोजन डालना होता है नहीं तो शरीर काम नहीं करेगा सो यू हैव टू पुट फूड अभी कार में कभी कभी रिपेयर करना होता है कार को साफ सफाई करना होता है इस तरह रोज हम नहाते हैं शरीर को कार में कभी कभी टूट जाता है पार्ट तो उसको रिपेयर करते हैं इस तरह शरीर में भी कुछ टांग टूट गया पैर हाथ पैर टूट गया तो हम डॉक्टर के पास जाकर हम पट्टी लगाते हैं शरीर को ठीक करते हैं लेकिन जब आप कार में बैठे हैं ज़रूर आप कार के बारे में सोचते नहीं हैं करेक्ट किसके बारे में आप सोचते हैं अगर कोई बिजनेसमैन है कार में बैठा है आगे जा रहा है वो लक्ष्य के बारे में सोचता है वो मैं किधर जा रहा हूँ किसको मिलने वाला हूँ क्या बिजनेस करने वाला हूँ इतना पैसा देना है इतना पैसा लेना है वो अपने बिजनेस को भूलता नहीं लेकिन कार को जो ज़रूरत है उसको वो फुलफिल करता है जो भी ज़रूरत है उसको पूर्ति करता है इस तरह हमारे कार रूपी शरीर जो है इसकी ज़रूरतों को हम ज़रूर पूर्ति कर सकते हैं लेकिन इस कार को लेकर बैठना और इसको सजाना तजाना पूरा समय बिताना ये बड़ा मूर्खता है जैसे प्रभा जी उदाहरण देते हैं माता जी के बारे में वो लिपस्टिक लगाते हैं इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है तब वो नेल पॉलिश लगाते हैं लिपस्टिक लगाते हैं तरह तरह के कॉस्मेटिक्स लगाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर बाल को 50 तरीके से सजाते हैं और तरह तरह के वो माता जी नहीं अभी पुरुष के लिए भी हम बता सकते हैं अनेक चीज़ ऐसे तो माता हो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो ये शरीर को सजाने तजाने में डेकोरेटिंग द डेड बॉडी प्रभा जी बोलते थे ये मृत शरीर है जो भौतिक पदार्थ है अष्ट धातुओं से बनाया गया चीज़ है जो मरने वाली चीज़ है जो अशाश्वत है क्षणभंगुर है उसको पकड़कर उसको सारे समय देना समय बिताना वो शरीर की पूजा करना ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी माना जाता है लेकिन शरीर को जो ज़रूरत है देना होता है वो देना ही है जिसे खाने के लिए चाहिए रहने के लिए इसलिए बाबा जी बोलते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स टू कन्वर्ट अ टैच्ड कॉटेज इनटू अ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग तो हम देखते हैं कि इस्कॉन में भक्त बनने के बाद भी हमारे अंदर बहुत इच्छाएं होता है बड़े से बड़े घर चाहिए हमें बड़े बड़े से बड़े पैसा चाहिए हमें बड़े गाड़ी चाहिए बड़े हमें सामाजिक बड़े से सोशल प्रेस्टीज बड़े से सोशल प्रेस्टीज सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहिए और हमारे शारीरिक सुंदरता को बढ़ाना चाहिए जितना हम इन चीज़ों के पीछे पड़ेंगे तो देन वी आर चेजिंग आफ्टर द मिराज कुछ मिलने वाला नहीं है हम कृष्ण को भूल जाएंगे और हम भक्ति में तीव्र नहीं बन सकते हैं और कितना हम भौतिक जीवन को कम करके हम आध्यात्मिक चेतना को विकास करते हैं बढ़ाते हैं उतना द फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस विल इंक्रीज इन अवर हार्ट हमने आंखों से देखा है बहुत बार जितना लोग भौतिक जीवन को विकास करते हैं उतना वो डीले पड़ जाते हैं भक्ति में एकदम डीला डाला गया हाथ से पूरा हमने देखा है एकदम डीला डाला वो बोलते हैं प्रभु जी सोलह माला हो जाता है रात को 12 बजे के पहले वो बोलते हैं मंदिर में आते हैं कभी कभी महीने में एक बार आते हैं दो महीने में एक बार आते हैं भक्तों को कभी कभी मिलते हैं तो कम से कम जो मिनिमम करना है वो कर लेते हैं बस और सम और अदर ड्रैगिंग अलॉन्ग इस कॉल एज कोस्टिंग अलॉन्ग यू नो दे आर कोस्टिंग अलॉन्ग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल अदर डिवोटीज आर ड्रैगिंग हिम ऐसे उनके साथ जाते हैं ये भी क्योंकि सब भक्त लोग उनको ड्रैग करके लेके जाते हैं इस तरह पीपल आर गोइंग लाइक दैट ऑन द अदर हैंड प्रभुपाद ने बोला कि गृहस्थों से प्रभुपाद की अपेक्षा थी कि टू डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम टू डिस्ट्रीब्यूट द होली बुक्स शास्त्रास टू डिस्ट्रीब्यूट द होली प्रसादम एंड टू ब्रिंग पीपल एंड कंस्ट्रक्ट ब्यूटिफुल टेम्पल्स फॉर कृष्णा एंड कम एंड टेक पार्ट इन ऑल सर्विसेस भगवान के नाम का वितरण शास्त्र का वितरण प्रसाद का वितरण भगवान के लिए दिव्य मंदिर बांधना और भक्तों के साथ आकर संकीर्तन करना और ये सब करके जितना आप प्रचार करते हो, प्रचार करने से आप भगवान के साथ हमारा संबंध जो हो बहुत निकट बन जाएगा, भगवान और महान वैष्णव के साथ संबंध, क्योंकि प्रचार करते समय हम अनेक खतरों को सामना करते हैं। कहीं तो हम अपने जीवन में भौतिक पदार्थ में हम फंस सकते हैं, भौतिक चेतना में। तो कुंती महारानी बोलती है निवृत्त गुणवृत्त, ये जो ऐसे तीन गुणों से परे होकर जीते हैं भक्त, उनके संपत्ति बन जाते हैं भगवान। इसलिए ये कार्तिक महीने में हम देखते हैं भगवान ऐसे लीला करते हैं, जो भगवान लक्ष्मीपति हैं लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरों के घर में जाकर चोरी करते हैं, माखन का चोरी करते हैं। देखिए किस लिए, यशोदा के ऊपर प्रेम है, इसलिए भगवान से भय का मूर्तिमान स्वरूप भी डरता है भगवान से, लेकिन भगवान किससे डरते हैं, यशोदा मई से डरते हैं भगवान। भगवान को कोई देवता पकड़ नहीं सकते हैं, काल एवन भी नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन यशोदा मई पकड़ सकती है, क्योंकि भगवान उनके प्रेम से बंधे जाते हैं। सो विद वन कोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉक। आई रिसेंटली रेड अ ब्यूटिफुल कोट, इट इज सेड विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर सेज इन कृष्ण भावनामृत, वन ऑफ हिज बुक्स, ही सेज लाइक द सन इज नेचुरली वार्म, द मून इज नेचुरली कूल, द विंड इज नेचुरली रेस्टलेस, एंड द ओशन इज नेचुरली डीप, एंड द सेंटली पर्सन्स आर नेचुरली वेरी ग्रेव। इन द सेम वे कृष्णा इज नेचुरली कंट्रोल्ड बाई हिज डिवोटीज, ऐसे बताते हैं। सो कृष्णा बिकम्स वेरी नेचुरली कंट्रोल्ड बाई हिज डिवोटीज आउट ऑफ द लव, दैट्स वाई इज कॉल्ड एज नमो अकिंचन वित्ताय, वन हू बिकम्स द वेल्थ ऑफ हिज डिवोटीज, बिकॉज डिवोटीज गिव अवे ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड एंड पोसेस ओनली कृष्णा विद देम। कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, गौर भक्त वृंद की, थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा। तो आज पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि अपना क्षणभंगुर भौतिक जीवन है उसको पीछे डाल के हमारे आध्यात्मिक जीवन में चेतना को साफ रखते हुए कैसे हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो हम पहले उनसे उनको धन्यवाद देंगे जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ अनाउंसमेंट्स इस प्रकार है, आने वाले गुरुवार को हम मना रहे हैं श्रील प्रभुपाद तिरोभाव दिन, तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो सबको विनती है कि इस कार्यक्रम के लिए आ जाइए सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें होगा ऑफरिंग्स, अभिषेक, गुरु पूजा और प्रसादम। तो कार्यक्रम में आने वाले गुरुवार को 26 तारीख को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। आने वाले रविवार को मना रहे हैं गोवर्धन पूजा फेस्टिवल, 29 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक। ये रविवार है तो इस रविवार को सुबह जो अपना जो भागवतम क्लास होता है 10 से 12 बजे तक वो नहीं होगा, उसके बदले नॉर्मल भागवतम क्लास सुबह 8:30 बजे से होगा, 8:30 बजे मंदिर में होगा। तो जो लोग आना चाहते हैं वो उस भागवतम क्लास को आ सकते हैं। तो कृपया नोट कीजिए
8:20 to 9:30
या 8:20, 8:20 से 9:30 तक एक क्लास होगा संडे को मंदिर में। तो 10 से 12 वाला भागवतम क्लास जो हमेशा होता है वो नहीं होगा। आने वाले शनिवार को 28 अक्टूबर एक खास प्रोग्राम रखा गया है कॉरपोरेट लोगों के लिए, जो लोग कंपनी में काम करते हैं और जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो सबको आप बुला सकते हैं शनिवार को शाम को। और टॉपिक है आर्ट ऑफ हार्नेसिंग माइंड पावर, और प्रेजेंटेशन देंगे वंशवर्धन प्रभु जी। जैसे कि आप सबको पता है इस प्रोग्राम के लिए अगर 10:15 बजे के पहले आए तो आपको फ्री कूपन मिलता है, और उसके बाद आए तो कुछ लक्ष्मी लिया जाता है। वो इसलिए नहीं कि आपसे लक्ष्मी लेना है क्यों, बल्कि आप सबको टाइम पे बुलाने के लिए ये सब लक्ष्मी आपसे लिया जाता है। तो आप कृपा करके 10:15 बजे के अगर पहले आए तो आपको एक कूपन नहीं लेना पड़ेगा और प्रोग्राम भी पूरा अटेंड करने को मिलेगा। और आज का प्रसादम फिस्ट स्पॉन्सर किया है भक्त विवेक तेजवानी ने, उनके बर्थडे के अवसर पर। अगर वो यहाँ पे है तो आगे आके राधेश्याम प्रभु जी से कुछ गिफ्ट स्वीकार करें। विवेक तेजवानी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।